महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं 26वें अध्याय में, पंचम स्कंद के 26वें अध्याय। महर्षय एतद् वैचित्र्यम् लोकस्य कथमिति। महाराज आपने जो वर्णन किया लोगों के गतियों के विषय में, लोगों की ऊंची नीची गतियां कैसे प्राप्त होती हैं, इसमें इतनी विभिन्नता क्यों हो जाती है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, प्रकृति के तीन गुण है, सत्व, रज और तम, और इन गुणों के प्रभाव से कोई सात्विक, कोई राजसिक, कोई तामसिक प्रवृत्ति का हो जाता है, और उनकी श्रद्धा भी राजसिक, तामसिक और सात्विक होती है। तो इन गुणों से प्रभावित लोगों की क्रियाएं भी भिन्न भिन्न हो जाती हैं श्रद्धा के अनुसार, और उन क्रियाओं के अनुरूप उसका रिजल्ट भी भिन्न भिन्न होता है, फल भी भिन्न भिन्न होने लगता है। तो कोई श्रद्धा अनुरूप शास्त्र के विचारों को स्वीकार करता है और सात्विक प्रवृत्ति का होता है वो उच्च लोक प्राप्त करता है, और कुछ शास्त्र के जो निषिद्ध कर्म है, विकर्म, उनको करते हैं तो निम्न योनि प्राप्त करते हैं। तो श्रद्धा के अनुसार ये असमानता होता है, समान फल नहीं मिलता। इन निषिद्ध कर्मों के परिणाम से, जो कामनाओं से आबद्ध होकर इस प्राकृत जगत में विविध कर्म करता है, अविद्या के वशीभूत हो जाता है। कामनाओं के साथ साथ अज्ञान छाया रहता है, कामना करता है लेकिन अज्ञान जनित कामना, जो चीज सुखमय नहीं है उसी में सुख बुद्धि कर लेता है और विविध कर्म करता है अज्ञान से। तो इस अज्ञान के वशीभूत होकर कामना पूर्वक किए गए निषिद्ध कर्मों का परिणाम से हजारों नारकी गतियां होती है नरक की, जिसका मैं विस्तार से वर्णन करना चाहता हूँ। सुखदेव गोस्वामी अपने से कह रहे हैं कि मैं वर्णन करूंगा। तो महाराज परीक्षित कहते हैं कि आप जिनका वर्णन करना चाहते हैं वो नरक कहाँ है? भुवन कोश के अंदर नरक का तो वर्णन नहीं किए, और नरक है कहाँ? इसी पृथ्वी पर कोई देश विशेष है अथवा इस त्रिलोकी के भुवन कोश के बाहर है? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, ये त्रिलोकी के भीतर है, बाहर नहीं है। दक्षिण की ओर है पृथ्वी से नीचे और जल के ऊपर, और इसी दिशा में पितृगण भी रहते हैं नरक के बगल में। वे एकाग्रता पूर्वक अपने वंश में होने वाले लोगों के कल्याण की कामना करते हैं, चाहते हैं कि इनका कल्याण हो जाए, और उस नरक लोक में सेवकों के साथ रहते हैं भगवान यमराज, जो सूर्य के पुत्र हैं, और अपने गणों के साथ भगवान यमराज प्राणियों के दुष्कर्मों के अनुसार उनको फल देते हैं, पाप का फल, दंड देते हैं। तो उनका नाम अलग अलग लक्षण है नरक का, अलग अलग नाम है। तो इस तरह से सब मिलाकर 28 नरकों का वर्णन है, अलग अलग विद्वानों के अनुसार 21 और 7 जोड़कर 28। तो उसका नाम है ताम्रिश, अंध ताम्रिश, रौ रौ, महारौ रौ, कुंभी पाक, काल सूत्र, असित पत्रवन, सुकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंश, तप्त सुरमी, वज्र कंटक सामली, सालमली, बैतरणी, पुरोध, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्ष, सारमयादन, अविची और अयपान। इसके अलावा 7 है क्षार करदम, रछोगण भोजन, शूलप्रोत, दंद सुख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूचीमुख। इस तरह से 28 प्रकार के नरक हैं। नरक का नाम रख दिए, लेकिन इन नरकों में कौन जाता है, किस प्रकार के पाप करने वाले इन नरकों में जाते हैं और कैसे वहां सताए जाते हैं, कैसे दुख होता है, इसका वर्णन कर रहे हैं। ताम्रिश नरक में कौन लोग जाते हैं, क्या दुष्कर्म करने वाले? जो दूसरों के धन, संतान और स्त्री का हरण करते हैं, ताम्रिश नरक में जाते हैं। और वहाँ जमराज के परिकर जमदूत अंधकारमय नरक में ले जाते हैं, एकदम प्रकाश कर, नरक में तो प्रकाश है नहीं, न सूर्य का, न चंद्रमा का, न अन्य ग्रहों का, न कोई बिजली, न लाइट, कुछ नहीं, अंधकार है। वहाँ जब आग जलाते हैं तो उससे प्रकाश दिखाई देता है, और कोई भोजन नहीं देते, अन्न जल नहीं देते हैं, डंडा लगाते हैं, भय दिखाते हैं। और देखिए एक बात समझना है, प्राकृत शरीर के जो स्थूल शरीर है वो तो यहाँ छूट जाता है, और इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, मन, बुद्धि, अहंकार, चित, इस सूक्ष्म शरीर को लेकर दूसरे शरीर में व्यक्ति जाता है,
वो रहता है
और इसके साथ ये शरीर छूटता है तो फिर जैसे जीव अपने कर्मों के अनुसार दूसरे शरीर को प्राप्त करता है माता के गर्भ में, उसी प्रकार नरक में जब ले जाते हैं दूत जमदूत लोग, जातना शरीर देते हैं, जातना शरीर में हाथ पैर सब होता है ठीक ठीक ऐसे ही, जैसा यहाँ शरीर है उसी प्रकार जातना शरीर देते हैं। तो जातना शरीर में दुख की अनुभूति होती है सब, लेकिन वो शरीर जल्दी नष्ट नहीं होता है, जितना दिन कर्म फल है उतना दिन भोगता है, खूब डंटा पड़ता है। यहाँ तो इस शरीर को 10-20 लाठी लगा दिया जाए तो छोड़ देगा शरीर अपना, लेकिन वहाँ उस शरीर के दुर्गति होने पर भी छोड़ नहीं पाता, क्योंकि स्पेशल दुख सहने के लिए ही शरीर मिला है। और मन वही है, बुद्धि वही है, चित वही है, अहंकार वही है। ताम्रिश नरक में पहला नरक है ताम्रिश, इसके बाद अंध ताम्रिश नरक दूसरे नंबर का। अंध ताम्रिश नरक में धोखा देकर दूसरे को चीटिंग करके दूसरे के स्त्री और धन को व्यक्ति भोगता है। ऐसे पापी लोग हैं कि धोखा देकर मित्र बनाकर उसके स्त्री को या उसके धन को भोगते हैं, तो उनको अंध ताम्रिश नरक में ले जाते हैं। वहां भी अंधकार है, अंधकार सब नरक में है। वहां जड़ से कटे हुए वृक्ष के सदृश वेदना के मारे सारी सूध भूत खो जाता है, मारते हैं गिरते हैं सब, कुछ सूझता नहीं है। इतना डंटा पड़ता है कि जैसे वृक्ष काट दिया जाए और गिर जाता है, वैसे शरीर में कुछ रह नहीं जाता, गिरता है, फिर पीटते हैं और ऐसे अब याद कराते हैं, तुमने ऐसा किया था ना, धोखा देकर दूसरे के स्त्री और धन को भोगा था। इसके बाद तीसरा नंबर का नरक है रौरव। रौरव में वो लोग जाते हैं जो देहात्म बुद्धि में पढ़कर अपने देह को ही आत्मा मानकर दूसरे प्राणियों से द्रोह करते हैं, दूसरे को सताते हैं और अपने को और अपने परिवार वालों को, कुटुम्ब के भरण पोषण में लगे रहते हैं। वो समझते हैं कि चाहे कोई दूसरा को कितना हो दुख हो कोई बात नहीं, हम ठीक रहना चाहिए, हमारे परिवार के लोग, तो अपने शरीर के पालन में अपने कुटुम्ब के पालन में दूसरे से झगड़ा करता फिरता है, द्रोह करता है। वो व्यक्ति रौरव नरक में जाता है और वहां पर जिस प्रकार वह दूसरे जीवों को सताया है उसी प्रकार वहां रूरू नाम के पक्षी होती है। रूरू बहुत भयंकर पक्षी, वो हिंसक रूरू पक्षी उसे अपने चोच से नोचते हैं, मारते हैं, कुछ कर नहीं सकता है। वहां जमदूत खड़े रहते हैं और रूरू पक्षी के पास ले जाते हैं उसको और उसको चोच से अपने खोपते रहते हैं, ऐसे कष्ट देते हैं हिंसक जीव। और इसके बाद महारौरव, महारौरव में वह जाता है जो किसी का परवाह नहीं करके अपना शरीर पोषण करता है। कुछ लोग तो अपने परिवार, अपने स्त्री, अपने बच्चे, अपने संबंधी के परवाह करके और दूसरे जीवों को सताते हैं और रौरव नरक में जाते हैं। आज जो अपने परिवार की भी चिंता नहीं करता, अपनी स्त्री बच्चे माता पिता किसी की परवाह नहीं करके केवल अपना शरीर भरण में लगा रहता है, तो वह महारौरव में जाता है। रौरव से भी भयंकर है महारौरव। तो महारौरव में क्या करते हैं, उसी प्रकार के रूरू पक्षी होते हैं बहुत कठिन, और उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं। रौरव में केवल चोच मारते हैं और इसमें निकाल करके उसके मांस खाते हैं और कुछ कर नहीं सकता, अनव मरता है। अगर मान लीजिए 10,000 वर्ष तक रौरव में रहना है तो 10,000 वर्ष उसी तरह जीवित रहेगा, वैसे ही उसके मांस खाते रहेंगे, जितना दिन उसको रहना है वहां रहेगा, मरेगा नहीं, दुख की अनुभूति करेगा उस। और जो लोग मांसाहारी हैं, मांस खाते हैं, अपने पेट पालन के लिए, अपने जिह्वा की तृप्ति के लिए मछली खाते हैं, मांस खाते हैं, बकरे का वध कर देते हैं, सुअर का, गाय का, ऐसे पशु पक्षियों का मांस जो खाते हैं और बहुत बुद्धि लगाकर उसको रांधते हैं, आग में बनाते हैं, बना बना कर खाते हैं तरह तरह की, तो ऐसे लोग कुंभी पाक में जाते हैं। कुंभी पाक नरक में बहुत बड़ा कड़ाह, कई योजन का, 100-200 किलोमीटर तक फैला हुआ, 1000 किलोमीटर तक फैला हुआ कड़ाह है और उसके अंदर तेल है और हीटेड रहता है, और उस तेल में ले जाकर जमदूत पकौड़ी की तरह छानते हैं। उस व्यक्ति को और उसी में डाल देते हैं और छन छन करके जलता है और उसी तरह उठाते हैं छोड़ते हैं। कहते याद है ना तूने मांस बनाकर खाया था, दूसरे जीव की हत्या करके तूने ऐसे ही खाया था ना, पशुओं के मांस की पकौड़ा खाया था, चल। और मरता नहीं है, ये डालने के बाद भी मरता नहीं है, याद आता है कि हाँ मैंने खाया था, खाया था ना गाय का मांस खाया था ना, याद है। वो जीव नहीं है, उसकी हत्या करके तूने उसका मांस खाया था, मछली खाया था, बकरा खाया था, याद दिलाते हैं और उसी तरह उनको करते हैं कुंभी पाक। और जो लोग अपने माता पिता ब्राह्मण और वेद वैदिक नियम की अवहेलना करके विरोध करते हैं, अरे बेकार ये सब ब्राह्मण लोग बढ़ा चढ़ा कर लिख दिए हैं, सबके लिए थोड़े है, अपनी पूजा कराने के लिए ब्राह्मण लोग इस तरह लिखते हैं, ब्राह्मणों के बात नहीं मानना चाहिए, हम समाजवादी हैं। तो ऐसे समाजवादी लोग जो ब्राह्मणों की अवहेलना करते हैं, वेद की अवहेलना करते हैं, माता पिता की आज्ञा नहीं मानते, ये जाते हैं काल सूत्र नरक में। काल सूत्र नरक में क्या होता है कि 10,000 योजन का लंबा तंबा का तप्त भूमि है, तंबा है लाल और वो हीटेड रहता है एकदम तावा की तरह और लाल एकदम जलता हुआ और ऊपर से सूर्य का प्रकाश खूब प्रखर आँच आता है तप्त। उस तप्त भूमि में 80,000 माइल लंबा चौड़ा स्थान में उसको घुमाया जाता है बिना जूता चप्पल के, उसी पर चलाया जाता है, नीचे से एकदम जल रहा है, छन छनी पैर उठाया दूसरा जलता है, ऊपर से धूप लग रहा है और उसी में घुमाते हैं, एक दो दिन नहीं हजार हजार वर्ष तक, जितना दिन पाप का फल नहीं मिलेगा उतना जलता है। अब कहीं रुकने कोई पेड़ नहीं कोई घर नहीं, उसी पर घुमाते हैं और नीचे से गर्म लग रहा है तांबा का भूमि जलता है, ऊपर से गर्मी घाम। तो इस तरह से काल सूत्र में जाता है, कौन जाता है जो वेद का ब्राह्मण का और माता पिता का आज्ञा उल्लंघन करता है। कुछ लोग जब मन करे तब वैदिक मर्यादा छोड़ देते हैं और जो मन करता है पाखंड धर्म का पालन करने लगते हैं, बिना इमरजेंसी आए बिना आपत्ति आए कुछ भी खाने लगना कुछ भी करने लगना। आपत्ति काल में ब्राह्मण क्षत्रिय का कर्म कर सकता है या क्षत्रिय वैश्य का वैश्य शूद्र का नीचे के कर्म भी किया जा सकता है आपत्ति में, लेकिन बिना आपत्ति के वो वैदिक मार्ग को छोड़कर पाखंड के धर्म का पालन करने लगता है, भोग भोगने के लिए बस साधु का बाना पहनकर और चलने लगता है। तो इस तरह से वो असित पत्र वन में जाता है, ऐसे असित पत्र वन नामक नरक है। वहां पर यमराज के दूत कोड़ा से पीटते हैं और भागने पर तलवार के समान ताल पत्र है, उससे शरीर कटने लगता है, वो जहां भी गिरता है शरीर कटता है और ऊपर से पीटते हैं। और आठवां नंबर का नरक है निरपराध मनुष्य या ब्राह्मण को राज कर्मचारी होकर दंड देते हैं। जो राज कर्मचारी हो गए, अधिकारी हो गए, दरोगा हो गए, पुलिस हो गए, मजिस्ट्रेट हो गए, जज हो गए, तो बस निरपराध को भी दंड देने लगे। पैसा कुछ मिल गया तो चलो इसको सजा सुना दो, कोई पैसा देने के दे करके किसी को सजा करा देता है, झूठा केस कर देता है और इस तरह से निरपराध व्यक्ति को दंडित करता है। या ब्राह्मण को, ब्राह्मण को या किसी भी जाति के निरपराध को जो दंड देता है वो शूकर मुख नरक में जाता है। शूकर मुख नरक कैसा है तो जमदूत उसे कोल्हू में पेरे जाने वाले गन्ने के समान कुचलते हैं, जैसे गन्ना मशीन से निकाला जाता है वैसे डालते हैं और शरीर को इसी तरह दबाते हैं कोल्हू में और सारा शरीर से निकलता है खून गिरता है फिर निकाल कर उसी तरह लगाते रहते हैं। इस तरह से शूकर मुख नरक में ले जाते हैं। और कभी कभी छोटे छोटे जीव बेचारे वो नहीं जानते हैं कि हम गलती कर रहे हैं, जैसे खटमल हैं या जूं है खाट में पड़ जाते हैं कुछ कीड़े या और भी जहां तहां कीड़े हो जाते हैं उनकी हिंसा करते हैं, वे अंधकूप नरक में जाते हैं। जिनसे द्रोह किया जाता है वही वहां सांप मच्छर खटमल जूं बन करके वहां आ करके उसको काटते हैं, उसी में पड़ा रहता है, उसी में मच्छर काटते हैं, जीव काटते हैं, खटमल काटते हैं, सांप काटते रहते हैं, लेकिन मरता नहीं। और बिना यज्ञ किया या भोग लगाए बिना या अपने साथ किसी दूसरे को बिना खिलाए भगवान को बिना अर्पित किए जो भोजन करता है उसको भी एक स्पेशल नरक है। स्पेशल नरक क्रीमी भोजन, क्रीमी भोजन नरक ऐसा नरक है जहाँ 1,00,000 योजन लंबे यानी 8,00,000 माइल लंबा चौड़ा एक कुंड है, कीड़े का कुंड है, उसमें खटखट खटखट कीड़े पड़े हैं, कीड़े रहते हैं और उसमें उस व्यक्ति को डाल दिया जाता है। कीड़े काटते हैं और छटपटाता है, उसको भूख लगती है, केवल कीड़े रहते हैं, दूसरा उसमें कुछ नहीं रहता, थोड़ा जल और केवल कीड़ा। तो उन कीड़ों को ही वो खाता भी है और कीड़े काटते भी हैं, क्या करे, उसी में पड़ा रहता है कई हजार। कृमि भोजन, उस कृमि को, कीड़े को भोजन करता है, जीवित कीड़े रहते हैं छोटे 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 छोटे, कृमि भोजन जो बिना भोग लगाए खाता है उसको कृमि भोजन करना पड़ता है, कीड़ों का भोजन। जो लोग दूसरे से जबरदस्ती छीन लेते हैं, अपहरण करते हैं या चोरी कर लेते हैं दूसरे की धन, खास करके ब्राह्मणों की संपत्ति चुरा लेते हैं, ऐसे लोग संदस नरक में जाते हैं। संदस, संदस नरक में जमदूत लोहे के तप्त गोला से एकदम लाल लाल करके दागते हैं शरीर पर, और फिर लाल लाल सरसी से, गर्म सरसी से चमड़ा उखाड़ते हैं, खाल खींचते हैं, पकड़ पकड़ कर नोचते हैं, इस तरह से दागते रहते हैं, सरसी से खाल निकालते हैं। और 12वां नंबर का नरक है अगम्या स्त्री के साथ भोग, अवैध स्त्री, अवैध स्त्री संग जो व्यक्ति करता है उस व्यक्ति को नरक में ले जाकर जमदूत एकदम पुरुष को, उस पुरुष के सामने एक लाल जलता हुआ एकदम लोहे के स्त्री बनाते हैं और उस पुरुष को इससे संपर्क कराते हैं, सटाते हैं, एकदम जलने लगता है, कहते अरे तुमने स्त्री संग किया है ना, इस तप्त स्त्री का संग करो, और स्त्री को एक पुरुष, लोहे का पुरुष बनाकर एकदम जलता हुआ पुरुष से संपर्क कराते हैं। जो पुरुष अवैध स्त्री के साथ संग करता है और जो स्त्री अवैध अपने पति के अलावा दूसरे पुरुष के साथ संग करती है उनके साथ एक स्पेशल नरक है तप्त सुरमी। तप्त सुरमी एकदम तप्त लोहे के स्त्री और पुरुष बनाए जाते हैं, और पुरुष को स्त्री के साथ और स्त्री को पुरुष के साथ स्पर्श कराया जाता है, एकदम जलता रहता है, लेकिन पकड़ पकड़ करके जमदूत उसको ऐसे ही उसके साथ स्पर्श कराते हैं, सटाते हैं और सह नहीं पाता है, झेलता है। वज्र कंटक सालमली, वज्र कंटक सालमली नरक है। जो पुरुष इस दूसरे की स्त्री के साथ संभोग करते हैं उसका तो तप्त सुरमी नरक हो गया, लेकिन दूसरे पशुओं के साथ भी व्यभिचार करते हैं उनको जमदूत ले जाते हैं, और एक सेमर का वृक्ष, लोहे का सेमर का वृक्ष जैसे बन, उस वृक्ष पर नीचे से ऊपर तक काटा होता है और उस पर चढ़ा करके, कठोर काटे होते हैं और उस पेड़ पर चढ़ाते हैं और उसमें सटा करके खींचते हैं, सारे शरीर में काट गड़ता हुआ शरीर फटता हुआ नीचे आता है, फिर नीचे आता है, फिर चढ़ाते हैं, फिर खींचते हैं। तो ये है अन्य पशुओं के साथ व्यभिचार करने वाले पापियों को, वज्र कंटक सालमली। और इसके बाद 14 नंबर का नरक है बैतरणी। बैतरणी नरक में वे लोग जाते हैं राजा या राज कर्मचारी जो अधिकार प्राप्त करके मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं, धर्म के अनुसार नहीं प्रजा के प्रति वो मर्यादा से हटकर व्यवहार करते हैं, सताते हैं जनता को, वे लोग जाते हैं बैतरणी में। बैतरणी नरक का क्या बनावट है, तो कहते हैं कि बहुत बड़ा कुंड है, बहुत लंबा चौड़ा, और उस कुंड में क्या भरा रहता है, मल, मूत्र, पीभ, रक्त, केश, नख, हड्डी, चर्बी, मांस, मज्जा, कुंड में भरा रहता है केवल गंदा चीज, और उसी में जीव को डाल दिया जाता है, उसी में डूबता है, डूबता रहता है, मल, मूत्र, पीभ, रक्त, केश, मांस, चर्बी, हड्डी और मज्जा आदि में डूबता है, उसी को खाता है, और उसमें जीव भी रहते हैं जो उसको चोंच मारते रहते हैं। फिर एक नरक है, शौचाचार का त्याग करके शूद्राओं वेश्याओं के साथ पशुवत आचरण, जो अपनी पत्नी से संतुष्ट न होकर जो वेश्या का मन करता है वो पुयोद नरक में जाता है। पुयोद नरक, पुयोद नरक में उसी तरह का पीभ विष्ठा मल मूत्र भरा रहता है और डाला जाता है उसमें। तो जो बैतरणी में तो डाला जाता है, पक्षी चोंच भी मारते हैं, इसमें ऐसा डाला जाता है, उसको डुबाया जाता है, उसी में डूबता है और उन्हीं को खाता है, पुयोद मल मूत्र का। और एक नरक है प्राण रोध है, प्राण रोध नरक में वो लोग जाते हैं जो ब्राह्मण आदि ऊंच वर्ण में जन्मे हैं, लेकिन एक कुत्ता गधा पालता है और शिकार आदि करके पशुओं का वध करता है। कुत्ता का पालन करने वाले लोग जो ऊंचे वंश में जन्मे हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैष्णव हैं, वे लोग कुत्ता का जो पालन करते हैं या गधा का पालन करते हैं नीच जाति के जीव का, या शिकार करते हैं पशुओं का वध करते हैं, वे लोग इस प्राण रोध नरक में जाते हैं। वहां पर जमदूत लेकर बाण, धनुष बाण, और मारते हैं निशाना बना बना कर उसके ऊपर। अभी एक बाण आया है, इसे दर्द करा तब तक दूसरा बाण आ जाता है, मरता नहीं है। हर नरक में सोच लेना चाहिए कि वो मरता है ना, कोई दवा इंजेक्शन मलहम पट्टी होता है, कुछ नहीं, उसी तरह केवल दुख सहना है। कोई हॉस्पिटल नहीं नरक में है कि चलो इलाज कर लिया जाए, कुछ नहीं होता है। और इसके बाद पाखंड पूर्ण यज्ञों द्वारा पशुओं का वध करते हैं, और इस तरह से जब करते हैं पाखंड और यज्ञ में पशुओं का वध भी करते हैं तो विशेषण नरक में जाते हैं। वहां जमदूत बुरी तरह पीड़ा देते हैं, काटते रहते हैं उसके शरीर को, मारते हैं बलम से, खोबते रहते हैं। और एक विचित्र नरक का वर्णन है, वो पापी जो कामातुर होकर ब्राह्मण होकर उच्च वर्ण में जन्मा हुआ और सवर्णा पत्नी के साथ अपनी पत्नी अपने वर्ण की पत्नी है और उसको बीर्ज पान कराता है, बीर्ज पिलाता है, वो लाला भक्ष नरक में जाता है। लाला भक्ष नरक में जमदूत बीर्ज का बहुत बड़ा सरोवर है उसमें डाल देते हैं, कहते हैं इसको पीते रहो। और घर में आग लगाना, विष देना, लूटना, कुछ लोग ऐसे दुष्ट होते हैं किसी के घर में आग लगा देते हैं या धोखा से विष दे देते हैं, कोई मर जाता है, लूट लेते हैं, उनको सार मयादन नरक में भेजा जाता है। वहाँ बड़ा बड़ा डाल वाले, सिंह वाले या बड़दात वाले भयंकर 720 कुत्ते होते हैं, भयंकर, उनके बड़े बड़े दांत होता है, 720 कुत्ते, और उनको छोड़ा जाता है, वो दौड़ दौड़ कर काटते हैं उस व्यक्ति को जो घर में आग लगाता है, विष देता है उसको। इसके बाद अविची नरक है, अविची नरक उसको मिलता है जो गवाही में या बिजनेस में कमाने में बहुत ज्यादा झूठ बोलता है या दान के समय, तीन समय झूठ बोलता है। एक तो गवाही करने में कोर्ट में जाकर झूठ गवाही करता है, अपने बिजनेस व्यापार में बहुत ज्यादा झूठ बोलता है। थोड़ा झूठ के लिए तो प्रभुपाद जी कहते हैं चल सकता है, इसीलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे दाल में नमक चाहिए, अगर कम डाल दिए तो फीका लगने लगेगा, ज्यादा डाल देंगे तो खा नहीं पाएंगे। तो एक हिसाब से जैसे दाल में नमक की जरूरत पड़ता है, वैसे ही व्यापार में झूठ का जरूरत पड़ता है। तो व्यापार में ज्यादा झूठ बोलने वाले और दान के समय झूठ बोलने वाले, अब देख रहे हैं कि बहुत बड़ा समाज झूठा है तो अब अनाउंस कर देते हैं हम भी देंगे, बोल दीजिए हम इतना देंगे, 1 लाख देंगे, 5 लाख देंगे, अब बोल देते हैं लेकिन देते नहीं। अब कलेक्शन करने वाले भक्तों की नानी मर जाती है 10 बार जाने के बाद भी घुमाते रहते हैं, अब ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो इस तरह से झूठ बोलने वाले लोग जाते हैं अविची नरक में। अविची नरक में 100 योजन ऊंचा पर्वत से गिराया जाता है, नीचे गिरता है पर्वत से, गिरने के बाद शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है, रीढ़ की हड्डी, सिर फट जाता है, लेकिन मरता नहीं है, फिर ले जाते हैं ऊपर, फिर पटक, इस तरह से दुख सहता है अविची नरक में। और कोई ब्राह्मण या ब्राह्मणी ये साधु ऐसे व्रत किया है और उस समय शराब पीता है, व्रती है, कोई व्रत किया है एकादशी या जो भी आदत पड़ा है, व्रत करते समय भी जो शराब पीता है तो उसको अयह पान नरक में भेजा जाता है, वहां जमदूत उसके छाती पर पैर रखते हैं, लोहा जब पिघला देते हैं आग में तो आग में लोहा पिघल कर एकदम तरल हो जाता है पानी जैसा, और मुंह में डालते हैं, इस तरह से दंड दिया जाता है। और निम्न श्रेणी का होकर भी अपने को बहुत बड़ा मानने वाला है, नीच स्तर का व्यक्ति गुण में, बुद्धि में, जाति में, क्षमता में, लेकिन दिखावा बड़े का करता है, और ढोंगी इस तरह से दिखाता है लोगों के सामने, बनता है अपने को बड़ा, और बड़ा बनता है तो चलो बनो कोई बात नहीं, लेकिन दूसरों का अपमान करता है, बड़ों का सत्कार नहीं करता है, जो वास्तव में बड़े हैं उनका अपमान करता है, ऐसे व्यक्ति को छार करदम नरक में भेजा जाता है। छार करदम, छार करदम नरक में जमदूत उसका सिर नीचे करके गिराते हैं, सिर के तरफ से गिराते हैं, सिर पर चोट लगता है, पीटते हैं फिर इस तरह छार करदम। और कुछ लोग नर मेध आदि भैरव का जजन करते हैं, स्त्री या पुरुष कुछ मनुष्यों को ही खाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को खा जाते हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों को जमदूत कुल्हाड़ी से उसके शरीर को काटते हैं, और काट करके लोहू पीते हैं, से निकलता है खून, काटते हैं कई जगह, मरता नहीं है, हमेशा याद रखिएगा, काटते रहते हैं और खून पीते रहते हैं। और गांव के भोले भाले निरपराध व्यक्ति को कुछ लोग बांध देते हैं, जंगल में कुआं में डाल देते हैं, या कांटे से बेधते हैं, दूसरे जीवों को तंग करते हैं, परेशान करते हैं, डाकू लोग ऐसा करते हैं, बहुत जंगल में पकड़ लेते हैं किसी आदमी को और बहुत दुख देते हैं, तरह तरह के दुख देते हैं, उसको जीवित ही किसी गड्ढे में डाल देते हैं, कई दिन तक रहकर बेचारा छटपटा कर मरता है, या कोई कटीला पदार्थ उसके शरीर में डालते हैं, काट काट करके ब्लेड से नमक लगाते हैं, मिर्चा लगाते हैं, और दुख सहता है उसी तरह सताते रहते हैं। इस तरह से कुछ लोग हैं, बहुत दुष्ट लोग ऐसे करते हैं, पकड़ लेते हैं, तंग करते हैं, तो उनको शूल प्रोत नरक में डाला जाता है, जहां पर जमदूत उसे शूल से बेधते हैं, और कंक बटेर आदि तीखी चोंच वाले जीवों से नुचवाते हैं। और कुछ लोग होते हैं सर्पों जैसा उग्र स्वभाव वाला, बात बात में फूह फूह करते हैं, कुछ उसे पूछने का कहने का हिम्मत किसी का नहीं करता है, कोई आदमी कुछ बात करना चाहे क्या बोल रहे हो, एकदम गर्म हो जाएगा, डांटने लगेगा, एकदम आक्रोश में हो जाएगा, सर्पों जैसे उग्र स्वभाव के होते हैं, अपने वाणी से अपने वचन से दुख देते हैं। तो ऐसे लोगों को सांपों जैसे स्वभाव वाले दंड सुख में जाते हैं, और वहां पांच पांच सात सात मुंह वाले सर्प उसे नोचते हैं, खाते रहते हैं। बहुत लोगों को सताया, बात ही बात में क्रोध करना, बेचारा सावधानी के साथ डरते डरता कुछ पूछना चाहता है, कुछ बोलता है, बस डांटने लगते हैं। तो ऐसे लोगों को दंड सुख नरक में, 25वां नंबर का नरक है। किसी प्राणी को अंधेरे खाई में, गुफा में, जहां तहां डाल देना, सता देना, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। अवट निरोधन नरक में जाते हैं, वहां ले जाकर विषैले धुएं से उसको घोटते रहते हैं, एकदम मिर्चा उर्चा का पका, लाल मिर्चा का आग लगाते हैं, और जाता है अब विषैला कुछ छोड़ते हैं, अब जाकर एकदम दुखी हो जाता है, वहां कई हजार वर्ष तक इसी तरह सताते हैं। और पर्यावर्तन नरक, कुछ परिवार में ऐसे लोग होते हैं जो अतिथियों पर बड़ी कुटिल दृष्टि से देखते हैं, देखो ये आ गए आप खाने के लिए, इस तरह से सोचते हैं, और उनको बोलते रहते हैं, नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में कोई अतिथि या कोई मेहमान आवे। तो उस पापी को पर्यावर्तन नरक में डाला जाता है, और उसके आंखों को गिद्ध, कंक, बाघ, बटेर, बज कठोर चोंच से मारते रहते हैं। जिस जो आंख अतिथियों को देखकर क्रोध किया है, देखता है बड़ा बुरा दृष्टि से देखता है, उन आंखों को नोचते हैं। वो जातना शरीर है, वो नोचने से नष्ट नहीं होता है। इसके बाद 28 नंबर का नरक है, धनाभिमानी लोग सबको टेढ़ी नजर से देखते हैं, धनावेश में सदा रहते हैं, हम धनी हैं, किसी भी व्यक्ति को अच्छे दृष्टि से नहीं देखते। तो ऐसे व्यक्ति को सूची मुख नरक में भेजा जाता है। वहाँ अर्थ पिशाच के सारे अंगों को जमदूत दर्जी जैसा सीते हैं मशीन पर, जैसे मशीन पर दर्जी सीते हैं सुई डोरा से सीते हैं, वैसे उसके शरीर को सीते रहते हैं। सूची मुख नरक। तो इस प्रकार 28 प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ। इसके बाद महाराज परीक्षित छठवां स्कंद के प्रारंभ में पूछते हैं, निवृत्ति मार्ग कथिता आदव भगवता जथा, हे भगवान आपने पहले आदव कथा कहते समय, प्रारंभ करते समय दूसरे स्कंद में निवृत्ति मार्ग का वर्णन कर चुके हैं। क्रम जोगोपलब्धे न ब्रह्मणा यद संस्थिति, आपने वहां बतलाया है कि कैसे अर्ची आदि माध्यम से जीव क्रमशः ब्रह्म लोक जाता है, वहां मुक्ति के सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन किया है, और फिर आगे जाकर ब्रह्मा के साथ वो मुक्त होता है। फिर प्रवृत्ति लक्षण चैव त्रैगुण विषयो मुने सो सावलीन प्रकृति गुण सर्ग पुनः पुनः। फिर तीसरे स्कंद में आपने प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन किया है, दूसरे स्कंद में निवृत्ति मार्ग, तीसरे में प्रवृत्ति मार्ग का वर्णन, और वहां पर भांति भांति के कर्म करने वाले लोग अपने कर्म बंधन से छूटने के लिए इस कोशिश करते हैं। देखिए त्रिवर्ग में ही रहते हैं, संसार में लोगों की प्राप्ति होती है, प्रकृति के संबंध नहीं छूटने के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते हैं। और इसके साथ आपने और भी वर्णन किया, प्रिय व्रतो उतान पादो वंश चरितानि च द्वीप वर्ष समुद्रा दिन नदी उद्यान वनस्पति धरा मंडल संस्थानम भाग लक्षण मानत ज्योतिषाम विवराणाम च यथेदम असिजत विभु। आपने और भी चौथे पांचवें स्कंध में स्वयंभू मनु के वंश का, उतान पाद और प्रिय व्रत के वंश का वर्णन किया विस्तार से। उसमें द्वीप समुद्र पर्वत नदी उद्यान तरह तरह के भूगोल का भी वर्णन किया। लेकिन अधुनेह महाभाग यथैव नरका नरह नानो ग्रह यतना ने आ तन्मे व्याख्या तुम अर्हसी, छठवें श्लोक में कहते हैं, लेकिन हे महाभाग, हे सुखदेव गोस्वामी, अब मैं वह उपाय जानना चाहता हूँ जिस उपाय के करने से व्यक्ति इस जातनापूर्ण नरकों से बच जाए। आप तो ऐसा वर्णन कर दिए नरक का कि लगता है कि इसके रेंज से बाहर कोई नहीं है। 28 प्रकार के नरक, इनका रेंज बहुत विस्तृत है, सभी लोग नरक में चले जाएंगे। आप ऐसा कोई उपाय बताइए कि व्यक्ति इस नरक से बच जाए, नरक से बचने वाला उपाय बताइए आप कृपा करके। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, न चे दिहैवा पचतिम यथांघस कृतस्य कुरियान मन उक्ति पाणि भी धुवम सवई प्रेत नरका अनुपैति जे कीर्तिता में भवतस्तिग्म यातना। मनुष्य मन वाणी और शरीर से पाप करता है, यदि वह इन पापों का प्राश्चित इसी शरीर में नहीं कर लेता है तो मरने के बाद वो भयंकर नरक में निश्चित जाता है। मन से वाणी से शरीर से पाप होते ही रहते हैं। इसलिए मैंने जो पांचवें स्कंद के लास्ट में अभी अभी जो आपको नरकों का वर्णन सुनाया, वह नरक भोगना ही पड़ेगा। इसलिए परीक्षित, पाप के अनुसार प्राश्चित कर लेना चाहिए। तस्मात् पुरैवाश्चिह पाप निष्कृतो यतेत मृतो विपद्यतात्मना दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम जथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवीत। जैसा रोग वैसी दवा, डॉक्टर से चेक करा करके रोग का निदान कर लेना चाहिए समय पर। उसी प्रकार अपने पाप का समय रहते प्राश्चित कर लेना चाहिए, कठिन बीमारी और मृत्यु के आने के पहले ही प्राश्चित कर लेना चाहिए। प्राश्चित कर लेने से पाप मिट जाएगा। कैसा प्राश्चित? जैसा पाप वैसा प्राश्चित। छोटे पाप का छोटा प्राश्चित, बड़ा पाप का बड़ा प्राश्चित। दोषस्य दृष्ट्वा गुरु लाघवम जथा भिषक चिकित्सेत रुजाम निदानवीत। अगर ऑपरेशन का केस नहीं है तो थोड़े ऑपरेशन कराएंगे। थोड़ा अगर घात ऐसे दवा से सूख जाएगा तो ऑपरेशन की क्या जरूरत है? और नहीं, दवा से नहीं ठीक होने वाला है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार दोष को देखकर, अच्छा है बुरा है बड़ा है छोटा है, उसके अनुसार प्राश्चित। तब कहते हैं कि प्रभु ये लौकिक परलौकिक जितने नरक हैं दिखाई देता है, पाप वासना में लोग प्रवृत्त हैं, तो मनुष्यों का कभी तो प्रायश्चित द्वारा पाप का छुटकारा पा जाता है। मान लीजिए कुछ धर्म कर दिया, दान कर दिया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दे दिया, गंगा स्नान कर लिया, व्रत कर लिया, पाप मिट गया। मान लीजिए गंगा नहा लिया, पाप मिट गया, लेकिन उसके अंदर जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो तो पाप कराएगा। क्वचित निवर्ते अभद्रात क्वचित चरती तत्पुनः प्रायश्चितम अथो पार्थम मन्ने कुंजर शौचवत। महाराज परीक्षित कहते हैं कि हे गुरुदेव, हे सुखदेव गोस्वामी, मैं तो ऐसे प्रायश्चित को हाथी का स्नान समझता हूँ। नदी में गया, खूब स्नान किया, घंटों दो घंटा नहाता है, और निकलने के बाद फिर रास्ते का धूल उठाकर शरीर पर फेंकने लगता है। सोच उस स्नान से क्या फायदा? अभी प्रायश्चित किया, पाप करने की प्रवृत्ति है, गंगा नहाकर निकला, बस सिगरेट धराकर पीने लगा, तो उस स्नान से पाप मिट गया और तुरंत गंगा नहाया, होटल में जाकर मांस खाने लगा, तो इससे क्या पाप मिट जाएगा? तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी की देखो, अगर सावधानी के साथ एक बार स्नान कर लिया, दान कर लिया, पाप मिट गया, और फिर एकदम सावधानी पूर्वक पाप न करे, नियम का पालन करे, तो धीरे धीरे पाप की वासना भी समाप्त हो जाएगी। जैसे नाश नतः पथमेवानम व्याधयो भी भवंति ही एवं नियम कृत राजन शनै क्षेमाय कल्पते। हे राजन, अगर व्यक्ति खाने में ही सावधान रहे, सुपथ्य खा, जो खास जो पचा सके वही खाए, अगर पचाने में कठिन पड़ रहा है तो गरिष्ठ भोजन न करे, तेल में बना हुआ, छना हुआ या गरिष्ठ मसाला ज्यादा, ऐसे भोजन को न करे, एकदम सादा भोजन करे जिसको पचा सके, जो पथ्य अन्न है उसी को खाए, तो रोग से ग्रसित नहीं हो जाए होगा। सुपथ्य का सेवन करने पर रोग को अपने बस में कर लेता है, और कुपथ्य खाने पर रोग से ग्रसित हो जाता है। उसी प्रकार नियम का पालन करे, पाप करे ही ना, तो फिर प्रायश्चित की कोई जरूरत नहीं। लेकिन महाराज परीक्षित का मन संतुष्ट नहीं है, कहते हैं हाँ, तपसा ब्रह्मचर्य दमेन समेन च दमेन च त्यागेन शौच सत्य शौचाभान यमेन नियमेन च देह वाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञा श्रद्धयान्विता छिपंत्य अघम महदम अपि वेणु गुण मिवानल। कहते हैं कि इस तरह से अपने नियम कानून से रहे, तपस्या करे, ब्रह्मचर्य का पालन करे, इंद्रिय दमन करे, मन की स्थिरता, सत्य बोले, बाहर भीतर से पवित्र रहे, जम नियम का पालन करे, तो इस तरह से पाप समाप्त हो जाता है। इस तरह से पाप समाप्त हो जाता है जैसे बांस के झुरमुट में आग लगा दिया जाए, आग लग जाने पर बांस के झुरमुट जल जाता है, जल जाता है ना, जंगल में आग लगता है तो पेड़ सब जंगल जल जाते हैं। लेकिन ये सुखदेव गोस्वामी का ये प्रवचन महाराज परीक्षित के गला से उतर नहीं रहा है, अंदर जा नहीं रहा है। अरे क्या उदाहरण दे रहे हैं, झाड़ियों में आग लगाने पर आग से झाड़ी जल जाते हैं, गर्मी के दिन में 10-10, 20-20 किलोमीटर तक जंगल जल जाता है, लेकिन ऊपर के डाली जला है, नीचे का जड़ धरती में है, जे वही बरसात का पानी चालू होता है, आषाढ़ सावन आते आते फिर उसमें से जड़ निकलने लगता है, फिर जंगल हरा भरा। तो ऐसे प्रायश्चित से पाप मिटता है, लेकिन पाप की प्रवृत्ति नीचे है, तो वेणु गुल्म मिवानला आग लगने से बांस जलते हैं, तो क्या बरसात में फिर बांस हरे हरे नहीं हो जाते हैं? हो जाते हैं ना, तो ये उदाहरण उचित नहीं है। प्रायश्चित कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कह कर भी रियलाइज कर रहे हैं श्रोता का चेहरा देखकर, ना परफेक्ट उत्तर नहीं है, एकदम परफेक्ट नहीं। यद्यपि महाराज परीक्षित प्रश्न नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है सुखदेव गोस्वामी को कि संतुष्ट नहीं हो रहा है। तब कहते हैं देखो, और कोई प्रायश्चित काम करने वाला नहीं है, केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम धुनवंती काटने न निहार में वो भास्कर। अब तगड़ा प्रमाण दिए, कहते हैं केवल केवल केचित केवलया भक्त्या भगवान के शरण में रहने वाले भक्त वासुदेव परायणा, जो भगवान कृष्ण के परायण है, वह अगर भक्ति करता है, केवल भक्ति करता है, तो अघम धुनवंती काशने न, उसका पाप वैसे समाप्त हो जाता है जैसे सूरज के उगने से रात्रि का अंधकार या कुहरा का अंधकार समाप्त हो जाता है। ये सुंदर उदाहरण है। बिना सूरज के उगे अंधकार दूर नहीं होगा। भोजपुरी में एक चरवाहा गाना गाता था बहुत पहले, महाराज कहते हैं बहुत अच्छा लगता है कि लाखों बार गेसिया करोड़ बार दियाना, लेकिन बिना सूरज के उगले अंजोर नहीं। लाखों गैस जला दीजिए, लाखों दीपक जला दीजिए, लेकिन वह प्रकाश नहीं मिलने वाला है जो सूरज के उगने पर प्रकाश आता है। कितना हूँ प्राश्चित कर लीजिए छोटे छोटे, लेकिन वह प्राश्चित पाप को वैसा समाप्त नहीं कर सकता जैसा जैसी भक्ति। बिना कृष्ण के भक्ति के पाप समाप्त नहीं होता। भक्ति वासुदेव के परायण होकर, वासुदेवम सर्वम मिति स महात्मा सुदुर्लभ, श्री कृष्ण ही हमारे सब कुछ हैं, यह विश्वास करके उनके चरणों में भक्ति श्रवण कीर्तन भक्ति जब करते हैं तब पाप समाप्त होता है। कैसे? जैसे सूरज के उगने पर अंधकार, वैसे समाप्त हो जाता। अंधकार का नामो निशान नहीं दिन में जब सूरज आ जाते हैं। तो फिर आगे कहते हैं, न तथा हेगवान राजन पुएत तप आधवी, हे राजन पापी पुरुष की वैसी शुद्धि नहीं होती जब आत्मसमर्पण करने से जो होता है। यथा कृष्णार्पित प्राण तत्पुरुष निषेवया, व्यक्ति की पवित्रता पाप वैसा समाप्त नहीं होता और किसी भी कारण से, तप से, व्रत से, किसी भी उपाय से वैसी शुद्धि नहीं होती है जैसी शुद्धि कृष्णार्पित प्राण, कृष्ण में अर्पित प्राण करने से, भगवान में अर्पित प्राण करके। और तत्पुरुष निसेवया, भगवान की भक्ति और भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान में आत्मसमर्पण और उनके भक्तों की सेवा, दो विधि बतलाते हैं। तत्पुरुष निसेवया, तत्पुरुष माने कृष्ण के पुरुष, भगवान के भक्त, भगवान में अर्पित मन बुद्धि और भगवान के भक्तों की सेवा, ये दो उपाय से जैसे पाप समाप्त होता है वैसा तप आदि से नहीं, तीर्थ यात्रा से नहीं। तीर्थ यात्रा तो करके आते हैं, पाप की प्रवृत्ति नहीं जाती है, लेकिन महात्माओं के संग में आते हैं तो पाप की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। महात्मा लोग बोलते हैं, अरे नहीं बीड़ी नहीं पीना चाहिए, मांस नहीं खाना चाहिए, सिनेमा नहीं देखना चाहिए, सिखाते हैं वाणी से और आचरण से, तब वो देख कर सुन कर छोड़ देता है गलत प्रवृत्ति। और तीर्थों में स्नान कर देते हैं, शरीर ठीक शुद्ध हो जाता है, लेकिन तीर्थ नहीं सिखाता है, कुछ नहीं सिखाता है। इसलिए सबसे बढ़कर पाप नष्ट करने की उपाय है कृष्ण की भक्ति। सद्य चीनो है हम लोग के पंथा छेमो कुतो भय, सुशीला साधो जत्र नारायण परायण। कहते हैं इस प्रकार इस जगत में भक्ति का पंथ ही सर्वश्रेष्ठ भय रहित है, इसमें कोई टेंशन बाजी नहीं, केवल भगवान के विषय में सुनना है और बोलना है, उनका नाम उच्चारण करना है। इससे बढ़कर कल्याण स्वरूप मार्ग कोई नहीं है। इसी मार्ग पर सुशीला साधो जत्र नारायण परायण, ऐसे सुशील साधु जन भगवान की भक्ति करते हैं, नारायण परायण है, कृष्ण कॉन्शियसनेस है, कृष्ण भावना भावित भक्त जिस रास्ते पर चलते हैं उस रास्ते पर चलना चाहिए। और एक बार हे राजन अगर मन कृष्ण में लग गया ना, तो पाप तो सवाल ही नहीं आए। जमदूत तो उस भक्त को देख तक नहीं, कांप जाते हैं। सक्रीन मन कृष्ण पदारविंदयो निवेशितम तद गुण रागी जयरिह, नते जमम पाश भृतस तद भटान स्वप्ने पिपस्यन्ति हि चिरण निष्कृता। जो भगवान कृष्ण के चरणारविंद मकरंद का पान करता रहता है, उनके विषय में सुनता है, सक्रीन एक बार यदि मन लग गया कृष्ण के चरण में और उनके गुणों को सुनने में, तो ऐसे भक्तों का उपान करता है, बार बार सुनता है, तो सारा प्राश्चित कर लिया, कोई प्राश्चित बाकी नहीं है। और नते जमम पास भीतस्य तट भटान स्वप्ने पिपस्यन्ति ही चिरण निष्कृता, जमराज के दूत तो स्वप्न में भी उसके तरफ नहीं देखते हैं। प्रगट जाकर नरक ले जाएंगे ऐसी तो कोई सवाल ही नहीं, जमराज के दूत उसके पास जाते ही नहीं, और जब जमराज के दूत नहीं जाएंगे तो नरक में कैसे जाएगा। इसलिए भक्ति करनी चाहिए राजन। इस विषय में मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। इस इतिहास में भगवान के दूत, भगवान के परिकर और जमराज के दूतों में बहस हुआ है, वार्तालाप, इसको आप सुनिए। अथ चोदाहरंतिम इतिहासम पुरातनम दूतानाम विष्णु जमयो संवादस्तम निबोध में। आप मुझसे सुनिए। कान कुब्जे द्विजा कश्चित दासी पति रजा मिला, नामना नश्य सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। कन्नौज ब्राह्मण परिवार में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था जामिल, और अजामिल की दो विशेषता बतलाते हैं। वो कान कुब्ज गोत्र में जन्मा था और वो वेश्या का पति था, दो विशेषण है। ऊंचे परिवार में जन्मा है लेकिन दासी पति रजा मिला, वो वेश्या का पति, और वेश्या के संसर्ग में उसका सारा ब्राह्मण का सदाचार नष्ट हो चुका था। नामना नष्ट सदाचारो दस्या संसर्ग दूषित, दासी के संसर्ग में आने पर वो ब्राह्मण का सदाचार समाप्त। तो ब्राह्मण का सदाचार समाप्त हो गया तब क्या करता था कि वह राहगीरों को पकड़ता था, उनसे छीनता था, उनको लूट लेता था, लोगों को जुए खेलकर हराता था, किसी को धोखे धड़ी से धन लेता, किसी के घर में सेंध मार कर रात को घुस जाता, अपने कुटुम्ब पालन के लिए वो तरह तरह का पाप करने लगा। वेश्या के संग में आकर तरह तरह का पाप करता था। इस प्रकार वेश्या के संग में धीरे धीरे 88 वर्ष बीत गया, और उस वेश्या के गर्भ से अजामिल 10 पुत्र उत्पन्न किया। 10 पुत्रों में छोटे पुत्र का नाम अजामिल नारायण रखा था, नारायण संयोग से नाम रख गया। कुछ महात्मा लोग कहते हैं कि एक बार कुछ वैष्णव लोग गए थे गांव में और अजामिल घर पर नहीं था, महात्मा लोग रात को रुकना चाहते थे, शाम हो गया तो गांव में पूछे कि भाई हम लोगों के रुकने लायक कहाँ स्थान है। तो कुछ लोगों ने मजाक में बतला दिया कि अजामिल पंडित का घर है, बहुत अच्छे हैं, उनकी पत्नी तो एकदम साक्षात भक्ति देवी है। महात्मा लोग वहां पहुंचे तो रुकने की अपनी बात कहे कि कहाँ पंडित जी हैं, हम लोग उनका नाम सुनकर आए हैं। तो वेश्या कहने लगी साफ साफ महात्माओं से कि गांव के लोग मजाक किए हैं, ऐसे पंडित जी तो घर पर है नहीं, मैं वेश्या हूँ, मेरे साथ रहने के कारण पंडित जी का जो ब्राह्मणत्व नष्ट हो चुका है, समाज उनको उपेक्षा कर दिया है, गांव के लोग व्यंग में आपको हमारे पास भेज दिए, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा शक्ति सामर्थ है हम आपकी सेवा के लिए तैयार हैं, यदि आप रुकना चाहें तो रुकिए। तो महात्माओं का हृदय तो बड़ा विदीर्ण हो गया, अरे बाप रे बाप, ये ब्राह्मण इतना गिर गया, वेश्या है और उसके गोद में एक छोटा सा बालक, एक दो महीना का बालक होगा, अभी नाम नहीं रखा गया था। तो महात्माओं को बड़ी दया आई, कई ऐसे व्यक्तियों का भी उद्धार होना चाहिए। तो अब वहां रुक कर खा कर क्या पवित्र करें चले गए, लेकिन कहे कि देखो बेटी कोई बात नहीं, हम लोग कहीं भी रुक लेंगे, लेकिन इस बच्चे का क्या नाम है जो तुम्हारे गोद में है। बड़ी ट्रिक से प्रीचिंग करते हैं वैष्णव लोग। तो कही कि अभी तो इसका कोई नाम नहीं है, तो ठीक है हमारी बात रख लेना, इस बच्चे का नाम नारायण रख लो, कहकर चले गए। अब जब अजामिल पंडित के आने पर वेश्या महात्माओं के आने की घटना सुनाई और कही कि इस बच्चे का नाम वो लोग नारायण रखे हैं, तो भी ब्राह्मण था ही, पहले से जानता था कि भगवान का नाम है नारायण, अच्छा नाम रखे हैं। तब उसी दिन से कीर्तन चालू हो गया, नारायण कहाँ है, नारायण खाया कि नहीं, नारायण सोया कि नहीं, नारायण स्कूल गया कि नहीं, सब तरह से नारायण नारायण, नारायण को मेरे गोद में दो। अब अजामिल भी कीर्तन कर रहा है, वेश्या भी कीर्तन कर रही है, नारायण नारायण नाम उच्चारण करने लगे। वो सोच लिए महात्मा लोग कि ऐसे तो इनको महामंत्र माला झोली देने से जपने वाले है नहीं, तो इस बच्चे का नाम ही नारायण रख दिए। कुछ वैष्णवों का कहना है, कुछ कहते हैं ऐसे नाम नारायण पड़ गया, और वह अजामिल नारायण में आसक्त था, उसके बाल सुलभ व्यवहारों से स्नेह से खिलाना पिलाना गोद में लेना एक दिन अजामिल मृत्यु शैया पर पड़ा हुआ था। तब तक तीन जमदूत बड़ा भयंकर रूप हाथ में रस्सी लिए हुए डंडा लिए हुए मुंह टेढ़े शरीर में रोए खड़े लाल लाल बाल तंबे की तरह लाल लाल आंखें एकदम भयंकर आ गए। उनको देखा जब अजामिल तो एकदम भयभीत हो गया और भयभीत होकर के अपने बच्चे का नाम पुकारा, बगल में बच्चा था, नारायण आओ, हे नारायण, नारायण आओ, स्वयं हे नारायण आओ, दूरे किरण नकाशक्तम पुत्रम नारायण आओ, हम नारायण को पुकारा। जेव ही नारायण कहा त्यों ही भगवान के परिकर सोचे कि भगवान को पुकार रहा है संकट के घड़ी में नारायण को, तो भगवान के चार परिकर चार पार्षद वहां आ गए, हाथ में गदा चक्र लिए हुए एकदम उपस्थित हो गए, खूब सुंदर परिकर वहां आ गए और आते ही कहने लगे डरो मत डरो मत, और उन जमदूतों को कहे छोड़ दो। जमदूत तो उनके आत्मा को पकड़ कर ले जाना चाहते थे, अब जातना शरीर देंगे नरक भोगने के लिए अलग ड्रेस पहनाएंगे, यहाँ से आत्मा को पकड़ रहे थे, तब तक भगवत पार्षद आकर रोक दिए, नहीं तुम ले नहीं जा सकते हो। अब जमदूत तो एकदम घबरा गए, एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि जमराज की आज्ञा का उल्लंघन करने वाला ये कौन आ गए भाई, देखने में इतना सुंदर और ऐसा काम क्यों। तो कहते के यूयम प्रतिषेध धारो धर्म राजस्य शासनम, जमदूत कहते अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग कौन हो, कसवा कुत आया था कसमा रस्य निषेध था, कहां से आए हो और आते ही तुम लोग मना क्यों कर रहे हो, किम देवा उपदेवा वा जूयम किम सिद्ध सत्तमा, क्या तुम देवता हो कि उपदेवता हो, सिद्ध गंधर्व हो या कोई सिद्धों में श्रेष्ठ हो, कौन हो तुम लोग, क्यों मना कर रहे हो। अरे देखने में इतना सुंदर और काम इतना गलत, पापी का पक्ष ले रहे हो, सर्वे पद्म पला साक्षा पीत कौशे वास किरीटिन कुंडलिनो लसत पुष्कर मालिना, इतना सुंदर शरीर है, कमल जैसी आंखें हैं, फर्स्ट क्लास, और पीताम्बर पहने हो, कुंडल पहने हो, मुकुट पहने हो, इतना सुंदर पुष्प की कमल की माला पहने हो, सर्वे चन नूतन वयस सभी नौजवान हो, सर्वे चारु चतुर्भुजा सुंदर सुंदर चार चार भुजाएं हैं और उसमें धनु निशंगा सिद्ध गदा शंख चक्राम भुजा श्रीय, तुम अपने हाथों में धनुष तरकस तलवार गदा शंख चक्र कमल आदि लिए हो, इतना सुंदर लग रहे हो, तुम्हारे आने से दिशो बी तिमिरा लोके कुर्वंत स्वेन रोचिसा, अरे तुम्हारे शरीर से प्रकाश निकल रहा है और इस रात्रि का अंधकार दूर हो रहा है, इतना सुंदर हो, लेकिन किमर्थम धर्म पाल स किंकरानो निषेध था, लेकिन तुम लोग धर्मराज की आज्ञा का निषेध क्यों कर रहे हो यार, समझ में नहीं आ रहा है तुम लोग कौन हो, क्यों धर्मराज की आज्ञा का निषेध कर रहे हो, क्या बात है। तो इस प्रकार पार्षद भगवत पार्षद हंसने लगे, कहे कि वास्तव में लोग तुम लोग धर्मराज के दूत हो कि झूठ बोल रहे हो हमारे भय से, सचमुच धर्मराज के दूत हो कि हम लोगों को देखकर तुम कह रहे हो कि हम धर्मराज के दूत हैं। यूयम वही धर्मराजस्य जदि निर्देश कारिण ब्रूत धर्म से नस्तत्वम यश्च धर्म से लक्षणम, अरे दूतों यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी दूत हो तो हमें बताओ ना धर्म का क्या लक्षण है, धर्म किसे कहते हैं, धर्म का तत्व जानते हो, तुम लोगों को पता है धर्म का रहस्य, बतलाओ बोलो बोलो धर्म का क्या अर्थ है, कथम सिद्ध्रियते दंड किम वास्य स्थान मिप्सितम दंड्या किम कारिण सर्वे आहोश स्वित कतचिन निर्णाम, कहते हैं दंड किस प्रकार दिया जाता है, किसको दिया जाता है, दंड का कौन पात्र है, मनुष्यों में सभी पापियों को दंड दिया जाता है कि कुछ कुछ को कंसेशन होता है, जितने लोग कुकर्म करते हैं सभी दंड के भागी हो जाते हैं कि कुछ को छोड़ दिया जाता है। अब जमदूत तो जमराज के यहाँ जो प्रवचन सुने हैं वो बोलने लगे, बहुत बढ़िया बात बोलते हैं अपने ज्ञान के अनुसार, जमदूता उचू वेद प्रणीतो धर्म यह धर्म विपर्जय, वेद ने जिन कर्मों का विधान किया है कि यह करना है ये करने लायक है वह धर्म है। वेद जिसको आज्ञा देता है कि यह कार्य करने लायक है वह धर्म है, और जिसका निषेध करता है वह अधर्म है। वेद जिसको मना करता है कि नहीं करना है वह कर्म अधर्म है, समझे। वेद कह दे कि यह काम कीजिए तो वह काम करना धर्म है, और वेद मना करता है कि ऐसा नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, मांस नहीं खाना है, पाप नहीं करना है, वेश्यागमन नहीं करना है, शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना है, नहीं करना है, चोरी बलजोरी नहीं करना है, अपहरण नहीं करना है, तो ये निषेध है, ये अधर्म है। और जो कहता है कि दान करना चाहिए, धर्म अपना स्वधर्म पालन करना चाहिए, दूसरे का उपकार करना चाहिए, ये धर्म है, ये तो क्लियर परिभाषा है। और वेद, वेदो नारायण साक्षात स्वयंभू रीति सुश्रुमा, वेद साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण, और वो स्वयंभू है, स्वयं से प्रकट हुआ है। वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है, वेद को किसी ने नहीं बनाया, जैसे भगवान स्वयं है वैसे वेद स्वयं है, भगवान के मुख से निश्चित वाणी वेद है। और प्रत्येक जीवों के कर्मों का, जो जीव कर्म करते रहते हैं अपने प्रकृति के गुणों में पढ़कर सत्व रज तम से प्रभावित होकर विविध कर्म करते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका कर्म ऐसे चला जाता है, उनके कर्मों का लेखा जोखा है, गवाह हैं, 14 गवाह का नाम रखते हैं। सूर्यो अग्नि खम मरुद गाव सोम संध्या हनी दिशा कमकु कालो धर्म इति हेते दैहस्य साक्षिण एते अधर्म विज्ञात स्थानम दंड से युजते सर्वे कर्मानुरोधे न दंड मरहंती कारिण। देखिए, सबके कर्मों के साक्षी हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है, जमराज इनसे पता लगा लेते हैं, निर्णय करते हैं, और फिर उनके पापों के कर्मानुसार, पाप के अनुसार दंड देते हैं। और हम लोग जमराज के दूत हैं, हमको भेजा जाता है ऐसे पापियों को लाने के लिए। तो इस लोक में जो मनुष्य जैसा कर्म करता है, जेन जावन यथा धर्मो धर्मो वेह समीहित स एव तत्फलम भुगते तथा तावन मूत्र वही। तो इस लोक में मनुष्य जिस प्रकार का कर्म करता है, जितना अधर्म और धर्म करता है, वह परलोक में उतना और वैसा फल भोगता है। बहुत सुंदर प्रवचन कर रहे हैं जमदूत, ऐसी बात नहीं है, कहे जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल, आज नहीं भी दिखाई दे रहा है तो मिलेगा। हम लोग जमदूत हैं, हम लोग उसको पकड़ कर ले जाते हैं, दंड देते हैं। तो इस प्रकार जीव विविध कर्म करता है, उन कर्मों का फल उसको मिलता है, मिलना चाहिए। और वर्तमान समय में जो व्यवहार देखा जाता है, यही वर्तमान भूत और भविष्य का भी अनुमान करा देता है। अगर वह धर्म में नियुक्त है तो इसका मतलब पहले भी उसका बैकग्राउंड ठीक रहा है, तब धार्मिक है। पाप कर रहा है तो इसका मतलब उसका भूत भी खराब था, संस्कार खराब था। और फिर आगे भविष्य में क्या होगा ये भी पता चल जाता है। वर्तमानो अन्यो कालो गुणा भी व्यापको यथा एवं जन्मानयो रेता तद्धर्मा धर्म निदर्शनम। इसलिए वैसे ही वर्तमान जन्म के पाप पूर्ण से भूत भविष्य का निर्धारण होता है, उसका अनुमान लग जाता है। यहाँ आप लोग भी देख सकते हो, हे सिद्ध पुरुषों, जीव इस शरीर में अपने 5 इंद्रियों से विविध प्रकार का कर्म करता है, उसका चलना फिरना, ज्ञान इंद्रियों से विषयों का अनुभव करना, और इन ज्ञान और कर्म इंद्रियों से विविध विषयों को भोगना, ये जीव करता रहता है इस संसार में। और करते करते जीव विविध प्रकार के अज्ञान में फंस कर अज्ञान बस लोभ क्रोध मोह मद मत्सर इन 6 शत्रुओं पर विजय नहीं प्राप्त कर पाता। देहियज्ञो जित षड वर्गो नैक्षण कर्माणि कार्यते कोशकार इवात्मानम कर्मणा छाद्य मोह्यति। इस प्रकार जीव विविध कर्म करते करते अपने कर्म के जाल में फंस जाता है। कैसे फंसता है? जैसे रेशम के कीड़े अपने ही मुंह से धागा निकालते हैं और बनाते हैं कोश, घर पूरा ऐसा घर बनाते हैं, घर बनाते 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 कोई दरवाजा ही नहीं छोड़ते हैं। और उसी में फंस कर मर जाते हैं कि और रेशम के तागा निकालने वाला उस कीड़े को पकड़ता है, गर्म पानी में डाल देता है, बस उसमें खोल कर मर जाते हैं, फिर तागा को निकाल कर कपड़ा बनाता है। या कोई कोई तो बिना डाले ही उसी में अगर छोड़ दिया जाए, कभी कभी कटीले पदार्थों में बेर और में जंगल में हम लोग रेशम के कीड़े देखे हैं, अनेक कीड़े उसमें पड़े रहते हैं और कोई न छुए उसे, छोड़ दे 6 महीना साल भर वैसे तो उसी में सूख जाता है और उसमें कहीं से हवा जाने का भी रास्ता नहीं रहता है और फल जैसा बेर जैसा दिखता है, कहीं भी रास्ता नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि ऑक्सीजन जाने का भी जगह नहीं रहता और वो अपने ही कर्म से अपनी मृत्यु का कारण बन जाता है। अगर कोई रेशम बनाने वाला नहीं भी जाए तब भी वो बचेगा नहीं, मर जाएगा। उसी प्रकार अपनी वासनाओं के कारण, अज्ञान के कारण जीव इतना काम चालू करता है, इतना लोभ क्रोध मोह मद मत्सर ईर्ष्या भर लेता है अपने मन में कि हमको इतना करना है, उससे धनी बनना है, अब ज्यादा कमाने के फेर में बहुत काम करता है, इतना काम चालू कर देता है कि उसको धाम में आने का फुर्सत नहीं, नाम जपने का फुर्सत नहीं, एकदम बिजी लाइफ, अपने द्वारा ही ऐसा व्यवहार करता है और इन कामों के करने के कारण अलग अलग लोकों में जाता है नरक आदि। तो इस प्रकार इस तरह से फंसा रहता है और नहीं निकल पाता। और जहां तक इसकी बात है, इसी तरह के जीव यह भी है, आप लोग इसके विषय में नहीं जानते हैं, हम जानते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड है इसका, ऐसे थोड़े आ गए हैं। अयम ही श्रुति संपन्न शीला गुण शीला वृत गुणालय धृत व्रतो मृदुर दांत सत्यवान मंत्र विशुचि, यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, बड़े अच्छे ब्राह्मण का लड़का है, पंडित, श्रुत संपन्न, सुना है वेद शास्त्र, शील गुण वृत गुणालय सदाचार और सदगुणों का खजाना था, धृत व्रत मृदुर दांत ब्रह्मचारी था, विनयी था, जितेंद्रिय था, सत्यनिष्ठ था, मंत्र वेता पवित्र, सब गुण था। लेकिन एक दिन की घटना है, अपने पिता की आज्ञा से वन में समीधा लाने के लिए चला गया, हवन की सामग्री और लेने के लिए गया जंगल में, कुश लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, फल फूल लेने के लिए गया और उधर से लेकर लौट रहा था। लौटते समय ददर्शम कामिनम कश्चि शुद्धम स भुजिशया पित्वा च मधुमेहम मदा घुणित नेत्रया मत्तया विश्लथा निव्या व्यपेतम निरपत्रपम क्रीडंतम अनुगायंतम हसंत्यम अनयांतिके। अब देखा वो जंगल में तो एक व्यक्ति शराब पीकर एक जीवती के साथ आलिंगन कर रहा है, चुम्बन कर रहा है, उसका दोनों शराब पीकर झूम रहे हैं, दोनों के आंख लाल लाल हैं, पित्वा च मधुमेह रेयम मदा घृणित नेत्रया आंख लाल लाल हैं मतया, और उसके वस्त्र खुले हुए हैं, एकदम देखने लगा, अर्ध नग्न अवस्था में देख रहा है। वो शूद्र उस वेश्या के साथ कभी गाता है, कभी हंसता है, तरह तरह की चेष्टा करता है। विष्टवा ताम काम लिपते न बाहुना परिरंभिताम जगाम हृदय वसम सहसैव विमोहिता। अब तो वो देखने लगा, देखते देखते एकदम प्रकट सिनेमा देख रहा है, अब क्या होगा। तो अब तो अपने को संभालने का कोशिश किया, जथा जावत सत्तम जथा श्रुतम, जितनी उसके पास पवित्रता थी, धर्म था, जितने वेद शास्त्र को सुना था, सारा ज्ञान लगा कर भी अपने को रोक नहीं पाया, उसकी काम वेग से विचलित मन नहीं रोक पाया। न ससा का समाधा तुम मनो मदन बेपित, कामदेव के द्वारा संचालित मन का वेग वो ज्ञान श्रवण से नहीं रुक पाया। अपने को याद किया कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरा इस सब काम नहीं है, अभी घर में विवाहिता पत्नी, भले ऊंच कुल की पत्नी थी, ज्योति थी, सुंदरी थी, बाला थी, लेकिन वो सब याद नहीं आ रहा है, वेश्या के मन में चला गया। और इस तरह तामे वह तो श्या मासा पित्रेण अर्थे न जावता, जब मोहित हो गया तो अब धर्म से विमुख हो गया, घर तो आ गया लेकिन चिंतन वेश्या का ही करता था। अब पता लगाने लगा कि वो वेश्या रहती कहाँ है, उसे संपर्क बढ़ाया, संपर्क करके उसे तरह तरह के वस्त्र आभूषण देकर प्रसन्न करने लगा, धीरे धीरे पिता की संपत्ति देने लगा उसको। तामेव तोषया मास पितृण अर्थेन जावता, पिता की जितनी संपत्ति थी सब वेश्या को दे दिया। ग्रामय मनोरमय कामे प्रसिद्धेता जथा तथा, उस कुलटा को रिझाने का कोशिश किया वो ब्राह्मण, सब तरह से कोशिश किया। अब अंत में वो कहने लगी कि अब आपके घर में ही रहना चाहिए, तो अपने घर में भी ले गया। और घर में जो पत्नी थी, अपनी पत्नी, उसको घर से निकाल दिया। इस प्रकार उस स्वच्छंद चारिणी कुलटा के तिरछी चितवन से मन जो लुभ गया था, वो अपने कुलीन और अप्रौढ़ा, कुलीन भारजा स्वभारजाम, अपनी पत्नी, विवाहिता पत्नी, अप्रौढ़ा, अप्रौढ़ा का मतलब अभी बेचारी पूरा पूरा प्रौढ़ नहीं हो पाई थी, वो काम चेष्टा नहीं जानती थी। अगर वो प्रौढ़ रहती तो उसको इस तरह विचलित नहीं होने देती, अपने हाव भाव से फंसा लेती, लेकिन अभी तो प्रौढ़ नहीं थी, अप्रौढ़ा थी, बाला थी। और इस तरह से उसको, उस नवज्योती को, विवाहिता पत्नी को परित्याग कर दिया। अब बताइए इसके पाप की कोई सीमा है? और वेश्या का पालन करने लगा, न्याय से अन्याय से जहां से भी धन मिलता था, चोरी करके, डकैती करके, अपहरण करके, जुआ खेलकर, जहां तहां से धन लाकर उसको पोषण करने लगा। और इस प्रकार शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन किया है, ब्राह्मण धर्म का अपमान किया है, छोड़ा है, और स्वच्छंद आचरण किया है, सत्पुरुषों का अपमान किया है, अपने पिता का अपमान किया है, ये पापी है। अतः एनम दंड पाणे सकाशम कृत किल विषम निश्यामो कृत निर्वेशम जत्र दंडे न शुद्धति। इसलिए हे सीधो, आप लोग ध्यान से सुनिए, हम लोग इस पापी को जमराज जी के पास ले जाएंगे और वहां इसके पाप का दंड मिलेगा, और फिर जब शुद्ध हो जाएगा तो फिर हम इसको छोड़ देंगे, इसके पाप का प्रायश्चित करेंगे नरक में, फिर शुद्ध करके छोड़ देंगे। कितना सुंदर प्रवचन है जमदूतों का, है ना, फर्स्ट क्लास बात कर रहे हैं ना। लेकिन भगवत पार्षद इनके प्रवचन को काट रहे हैं, कहते हैं भगवान के पार्षद नीति पूर्ण धर्म मर्म को जानने वाले भगवत जानने वाले पार्षदों ने जमदूतों के भाषण को काटते हुए कहते हैं, अहो कष्टम धन दिशाम अधर्म स्पृशते सभाम यत्ता दंड दंडेशु पापेशु दंडो या ध्रियते वृथा। कहते हैं भगवत पार्षद कि ओहो बड़ा दुख की बात है, बहुत बड़ा आश्चर्य है कि धर्मज्ञों की सभा में भी अधर्म प्रवेश कर गया। भगवान धर्मराज के यहाँ भी धर्म का ज्ञान नहीं है, हद हो गया एकदम। निरपराध और अदंडनीय व्यक्ति को दंड देने की विचार वहां भी चल रहा है। अरे पापी लोग तो निरपराधियों को दंड देते ही धर्मराज भी दंड देंगे, हद हो गया। वास्तव में प्रजा नाम पितरो ये च शास्तार साधवो समाह यदि स्यात्तेषु वैषम्यम कम यान्तिम शरणम प्रजा। यदि प्रजा के पालन करने वाले लोग इस तरह से विषमता करने लगेंगे, जो प्रजा के रक्षक हैं, प्रजा पालक हैं, समदर्शी हैं, परोपकारी हैं, ऐसे लोग यदि प्रजा के साथ विषमता का व्यवहार करेंगे तो प्रजा किसके शरण में जाएगी। जज्जत आचरती श्रेष्ठान इतरस तत् तत् दीहते स यत् प्रमाणम कुरते लोकस तदनुवर्तते। अरे सत्पुरुष लोग, बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, छोटे लोग तो नकल करते हैं, उनके आचरण का नकल करते हैं, अपने आचरण के द्वारा जिस कर्म को प्रमाणित कर देते हैं बड़े लोग, तो छोटा उनका अनुसरण करते हैं। धर्मराज जो धर्म के ठेकेदार हैं, उनको भी धर्म का ज्ञान नहीं है। अब भगवत पार्षद किस तरह की धर्म की बात कर रहे हैं सुनिए। जस्यांके शिर आधाय लोक स्वपित निवृत स्वयं धर्म अधर्म वा न ही वेद यथा पशु स कथम न्यर्पितात्मानम कृत मैत्रेय अचेतनम विश्रम्भणीयो भूतानाम सघृणो दुग्धमर्हत। किसी सत्पुरुष पर विश्वास करके उनके गोद में सोया जाए और वही दयालु पुरुष, साधु पुरुष अगर सिर काट दे तो फिर क्या होगा, विश्वासघात हो जाएगा। तो सारे दुनिया को धर्म का ज्ञान देने वाले धर्म के ठेकेदार धर्मराज को भी धर्म का ज्ञान नहीं है, आश्चर्य है, पहले तो आश्चर्य करते हैं, फिर कहते हैं कि अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंगसामपी यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्तायनम हरे है। अरे अरे जमदू तो सुन लो, कान खोलकर अपने स्वामी को भी बता देना, सुनो यह कोटि कोटि जन्मों के पाप राशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर चुका है, क्योंकि इसने विवश अवस्था में मरते समय जीवन के लास्ट में अंतिम में भगवान का नाम उच्चारण किया है। नाम स्वस्तायनम हरे, जो कल्याणमय आनंदमय भगवत नाम है उसका उच्चारण इन्होंने विवश अवस्था में किया है। वह बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, वहाँ केवल दुख दर्द कष्ट होता है, वहाँ भगवान का नाम याद नहीं आता, लेकिन ऐसे अवसर पर इन्होंने भगवान का नाम उच्चारण किया है, इसलिए यह करोड़ों करोड़ों जन्मों का पाप धो दिया। ये चार अक्षर का नाम जो नारायण उच्चारण किया है, इतना उच्चारण से ही पापों का प्रायश्चित हो गया। कहते हैं आप जानते हैं इनके पाप का लिस्ट, बहुत पाप किया है। अगर जमदूत कहते हैं कि बहुत पाप किया है, थोड़ा नहीं किया है, और इस तरह से उच्चारण करने से पाप समाप्त हो जाएगा, तो कहते हैं कि स्तेन सुरापो मित्र धुग ब्रह्मा गुरु तल्प स्त्री राज पितृ गोहंता एच पात किनो परे सर्वे शाम अप्य अगवताम इदम एव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णु यतस्तद विषयामति। अरे सभी प्रकार का पाप, कितना पाप कहूँ, चोर शराबी मित्र द्रोही ब्रह्मघाती गुरु पत्नी गामी और इस तरह के लोगों के संसर्ग में रहने वाला, दूषित लोगों के साथ रहने वाला, स्त्री राजा पिता गाय को मारने वाला, इतने पापी लोग, जितना भी पाप क्यों न हो, सबसे बड़ा प्रायश्चित है भगवान का नाम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्यों? क्योंकि यह भगवान नाम पाप तो समाप्त करता ही है, पाप की प्रवृत्ति नष्ट कर देता है अगर नियम पूर्वक जप किया जाए तो। कहते हैं कि देखो यह तद विषयामति अपने प्रति आत्मीय बुद्धि कर देता है, स्वयं भगवान भी उस नाम जपने वाले को अपना मान लेते हैं। नाम व्याहरणम विष्णु यतस तद विषयामति तद विषया, कहते हैं कि इस तरह नाम उच्चारण करने वाले के प्रति भगवान के आत्मीय बुद्धि हो जाती है, वो समझते हैं मेरा है, और भगवान मेरा मान लेते हैं तो फिर उस पर पाप, जमराज का हिम्मत है दंडित करने का। और इस तरह का नाम उच्चारण में जो क्षमता है वो और किसी भी व्रत में किसी भी तपस्या में किसी में कुछ नहीं है। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषियों ने पापों के बहुत से प्रायश्चित बतलाया, कृष चंद्रायण व्रत बहुत से बतलाए, परंतु सारे प्रायश्चित से पाप वैसा समाप्त नहीं होता है जैसे नाम से, नाम उच्चारण करने से। इस प्रकार इसने भगवान का नाम उच्चारण किया है, अब इसकी कोई पाप नहीं, ये नाम उच्चारण पाप की प्रवृत्ति को समाप्त कर देता है। नय कांतिनम तद्धिकृते पि निष्कृते मनः पुनर्धावती चेद असत्पथे। देखो प्रायश्चित किया जाता है लेकिन फिर मन पाप में जाता है, सारा तीर्थ यात्रा करते हैं, दान करते हैं, यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, बहुत बहुत साधन करते हैं, लेकिन प्रवृत्ति नहीं नष्ट होती, पाप के प्रायश्चित से पाप समाप्त हो जाता है लेकिन पुनर्धावती चेत असत्पथे चला जाता है, लेकिन तत्कर्म निर्हारम अभी सताम हरे गुणानुवादक खलुसत्व भावना। लेकिन भगवान का नाम, भगवान का गुणानुवाद कीर्तन कथा, ये व्यक्ति के सत्व को चित्त को पवित्र कर देता है, उसकी पाप की वासना नष्ट कर देता है। तो भगवत पार्षदों का भाषण सुन करके जमदूत कहते हैं, वो लोग भी समझ रहे हैं, एकदम बोका नहीं है, समझ रहे हैं कि भाई ये जो निर्णय कर रहे हैं भगवत पार्षद ठीक कह रहे हैं, भगवान के नाम में क्षमता है, लेकिन अजामिल को तो आप लोग मत ले जाइए, भगवान के नाम का उच्चारण किया है। तो कहते हैं कि नाम का उच्चारण कब किया, ये तो अपने बेटे का नाम बुलाया, ये अपने बेटे का नाम नारायण कहा है, भगवान का नाम थोड़े नारायण कहा है। भगवान का नाम नहीं किया कहा है, तब जमदूत कहते हैं कि इसके बेटे का नाम नारायण है। ये मूर्ख, नारायण नाम वास्तव में भगवान का है। लाखों लोग नारायण रख ले तो उनका नाम हो जाएगा, वास्तव में ओरिजिनल नारायण नाम तो भगवान का है। और उस नाम का उच्चारण किसी भी प्रकार कोई करता है तो पाप मिटता है, किसी तरह किसी अवस्था में, जान में अनजान में, जैसे तैसे संकेत में, परिहास में, उपहास पूर्वक किसी तरह नाम उच्चारण करे तो पाप मिटता है। सांकेत्यम पारिहास्यम वा ये स्तोभम हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशेषाग अघरम विदु। देखो महात्माओं का कहना है कि संकेत से किसी दूसरे अभिप्राय से या परिहास में मजाक में, मजाक में भी लोग कहते हैं हाँ ये आ गए हरे कृष्ण वाले हैं ये हरे कृष्ण वाले हैं या हरि बोल कुछ कह करके कहते हैं, मजाक करते हैं कि तरह तरह की बातें कहते हैं, चिढ़ाते हैं, संकेत करते हैं, राग अलापने में, किसी की अवहेलना करने में, जैसे तैसे नाम का उच्चारण हो जाए तो सारा पाप नष्ट हो जाता है, ऐसा महात्माओं का कहना है। किसी अवस्था में पतित स्खलित भग्न संदष्ट तप्त आहत हरिरित्य वसे नाह पुमानारहति जातनाम। किसी तरह वह गिरते समय, फिसलते समय, अंग भंग होते समय, चोट लगते समय, सांप के डसने पर, आग में जलते समय, विवस्ता से किसी अवस्था में वह अगर हरि हरि उच्चारण करता है, नारायण उच्चारण करता है तो पाप से मुक्त हो जाता है और सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। एक से एक बड़ा से बड़ा गुरुनाम च लघुनाम च गुरुणी च लघुनी च प्राश्चितानि पापानाम ज्ञातोक्तानि महर्षि भी। ऐसे महात्माओं का कहना है कि जानबूझकर कोई छोटा बड़ा पाप जितना हो सब कुछ समाप्त हो जाता है नाम उच्चारण करने से। पाप काटने के लिए कोई नाम उच्चारण करे तब ना, ये तो पाप काटने के लिए उच्चारण नहीं किया, ये तो अनजान में अपने बेटे का नाम पुकारा। तो कहते हैं इससे क्या अज्ञानाद अथवा ज्ञानाद उत्तम श्लोक नाम जत संकीर्तितम अघम पुंसो दहे देधो जथा नल। कहते हैं अगर कोई जान कर या अनजान कर, अनजान में जैसे भी भगवान का नाम उच्चारण करे वह भगवान का नाम उसके पापों को भस्म करेगा ही। जैसे कोई व्यक्ति जान में अनजान में अगर ईंधन में आग का स्पर्श करा दे, कोई छोटा सा बच्चा माचिस लेकर फेंक दे सूखे लकड़ी के ढेर में, वो तो नहीं जानता है कि जलेगा, लेकिन आग तो जलाकर भस्म कर देगी, वो सारा जल जाएगा। या बच्चा छुए अनजान में खेलता हुआ आग के अंगार को तो आग माफ नहीं करेगा कि बेचारा नहीं जानता है, वो जला देगा, उसके वस्तुगत गुण है। तो आग जैसे जला देता है वैसे पाप समाप्त हो जाता है। तो जान बुझ अनजान में संकीर्तन करने से मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं यथा गदम वीर्य तमम उपयुक्तम यदि क्षया अजानतो प्यात्म गुणम कुरियान मंत्रो प्युदाहृत। कहते हैं जैसे कोई शक्तिशाली अमृत को जान कर अनजान में किसी तरह पी ले तो उस पीने वाला को अमर बना देगा। अब ठीक उदाहरण दे रहे हैं, वैसे ही जान में अनजान में अगर भगवान का नाम उच्चारण किया जाए तो उसकी शक्ति वस्तु शक्ति है कि उसकी श्रद्धा की अपेक्षा नहीं करती, अपना गुण दिखा देगा, अमृत के समान है, उसको मुक्त कर देगा पापों से, उसका सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार जमदूतों के पास भगवान के पार्षदों ने जब ऐसा प्रवचन किया और अजामिल को जमदूतों के पास से मुक्त कर दिया, वे लोग रस्सी लगा दिए थे बांधने के लिए लेकिन तोड़ तार कर हटा दिए, कहे चलो हटो यहाँ से। अब तो जमदूत बेचारे करें क्या, तीन थे ये लोग चार थे, आ इनके चार चार भुजाएं भी थी और उसमें खाली भुजा नहीं, हथियार लिए थे, गदा लिए थे, धनुष लिए थे, तलवार लिए थे, अब थोड़ा सा बत कही आगे बढ़ने पर काट कूट देंगे। अब डर भी रहे थे, अब तर्क भी उत्तम किए तो लोग भागे और भाग करके अपने स्वामी के पास जाकर ज्यों के त्यों सुना दिए। और इधर अजामिल और भगवत पार्षद भी कुछ क्षण में अंतरहित हो गए, वो सीन ही चला गया। अजामिल अपने बेड पर पड़े पड़े देख रहा है, मरा नहीं, उसकी मृत्यु का टाइम बढ़ गया, भगवत पार्षद आ गए, अभी जीवन है, जमदूतों को हटा दिए। जामिल देखा कि ये दोनों चले गए, तब लगा अफसोस करने, चिंता करने, झुक कर भगवत पार्षदों को प्रणाम करना चाहता था। तब तक देखता है प्रणाम तो कर लिया धरती पर, उठ कर देखता है तो भगवत पार्षद नहीं है। तब लगा सोचने, ओहो मैंने अपने इंद्रियों का गुलाम होकर इस दासी के संसर्ग से मैंने कितना पाप किया, बाप रे बाप, मेरा ब्रह्मरत्व नष्ट हो गया, हाय हाय, धिक्कार है मुझको, धिंग माम विगरहितम सदभी दुष्कृतम कुल कंजनम अहो मे परमम कष्टम। कई श्लोकों में बोल रहा है, हित्वा बालाम सती यो हम सुरापाम असती मगाम, हाय हाय मैं अपने अपनी कुलवती पत्नी को, सती को, अबोध पत्नी को घर से निकाल करके इस शराब पीने वाली बेश्या को घर में लाया, इस कुल्टा को लाया, हाय हाय मैं बहुत नीच हूँ, पापी हूँ, मेरे समान कोई पापी नहीं है, मैं अपने बूढ़े माता पिता को घर से निकाल दिया जिसका मेरे अलावा और कोई रक्षक नहीं था, कोई और बंधु नहीं था, वृद्धा वृद्धौ अनाथ पितरु नान्य बंधु तपस्विनौ, मेरे माता पिता के मेरे अलावा और कोई बेटा नहीं था लेकिन मैं उनका अनादर किया, घर से निकाल दिया, हाय हाय मेरे जैसे नीच को क्या गति होगी, मैं सबसे नीच हूँ, मैंने उनको त्याग दिया, मैं कृतज्ञ हूँ। बहुत सोच रहा है, ग्लानि कर रहा है मन ही मन, मैं पापी हूँ, मैं इस असती के साथ रहा और मैं इस वेश्या का पति बनकर रहा, मेरा सारा धर्म नष्ट हो गया, वास्तव में मैं बड़ा पापी हूँ, क्या बतलाऊं, कैसे मेरे जीवन के अंत में भगवान का नाम उच्चारण हो गया, पता नहीं मैं कितना पाप किया हूँ, ये नारायण नाम मेरे जीवन के अंत में कैसे मेरे जिह्वा से स्पर्श किया। अब खूब सोच रहा है, वास्तव में इस जन्म में तो नहीं संभव है, इस जन्म में तो केवल पाप किया हूँ, लेकिन कभी न कभी पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म हुआ है, तभी तो मेरे जीवन के अंत में भगवान का नाम उच्चारण हुआ और मेरे मृत्यु के समय भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ। निश्चित रूप से कभी न कभी मैंने कुछ अच्छा व्यवहार किया है, पूर्व जन्म में कोई अच्छा व्यवहार किया है, इसलिए आज मेरे जीवन के अंत में भगवान के परिकरों का दर्शन हुआ। अब मैं जो जीवन बिताया इस वेश्या के साथ विविध प्रकार के पाप करने में, अब ऐसा नहीं करूंगा, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, अपनी सारी वासनाओं को दूर करूंगा, सबके साथ मित्रता का व्यवहार करूंगा, दुखियों पर दया करूंगा और पूरे जीवन संयम के साथ बिताऊंगा। मैं अब पहचान लिया अपने जीवन के कर्तव्य को, इस वेश्या ने मुझे कीड़ा मृग की तरह, बंदर की तरह नचाया है, अब मैं अपने अपने आप को मुक्त करूंगा इससे, और मैंने सत्य वस्तु परमात्मा को पहचान लिया आज, अब मैं शरीर में मैं और मेरे का भाव छोड़ करके मैं भगवान के नाम का कीर्तन करूंगा और अपने मन को शुद्ध करके जो मेरा शेष जीवन बचा है मैं भगवत भक्ति में लगाऊंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अंतिम श्लोक में अजामिल सोचता है, ममाहमित देहादौ हित्वा मिथ्यार्थ धीर मती धासे मनो भगवती शुद्धम तत्कीर्तनादि भी। मैं अपने चित्त को कीर्तन करके शुद्ध करूंगा, उच्चारण करूंगा नाम, और नाम उच्चारण करके अपने को पवित्र करूंगा, यह सोचकर सारे ममता बंधन वेश्या और उसके उत्पन्न पुत्र सबको छोड़ छाड़ कर चला गया हरिद्वार में। गंगा के तट पर गंगा में स्नान किया और वहाँ एक मंदिर में बैठकर अपने चित्त को समाहित करके भगवान का नाम जपने लगा, एकदम जान गया नाम की महिमा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस तरह से अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को पूर्ण कंट्रोल करके और भगवान का नाम बड़ी एकाग्रता ईमानदारी से जपने लगा, नाम अपराध से मुक्त होकर ईमानदारी के साथ नाम जपने लगा। नाम जपते जपते उसकी चित्तवृत्ति शुद्ध हो गई और एक दिन भगवत पार्षद बैकुंठ से विमान लेकर आ गए। जब विमान लेकर सामने आए, अजामिल ने उनको सिर झुकाकर नमस्कार किया और इसके बाद पार्षदों ने जब बैकुंठ जाने के लिए आग्रह किया तो गंगा में स्नान करके और बड़ी पवित्रता के साथ तिलक आदि लगा करके अपना शरीर छोड़ा भगवान में चित लगा कर, और तत्काल भगवत पार्षदों ने उनको बैकुंठ जाने के लिए भगवत पार्षद शरीर देकर उनको बैकुंठ ले गए, आकाश में लेकर चले गए। इस प्रकार वो भगवान लक्ष्मीपति के धाम में चला गया। साकम विहायसा विप्रो महापुरुष किं करई हायमम विमान मारुया ययु यत्र श्रियः पति। सोने के विमान पर चढ़कर वहां गया जहां लक्ष्मी के साथ भगवान रहते हैं। इस तरह से वह अजामिल बैकुंठ को प्राप्त किया। तब महाराज परीक्षित पूछते हैं, अजामिल तो बैकुंठ चला गया, लेकिन वो दूत लोग गए जब जमराज जी के पास तो क्या रिपोर्ट किए? इधर की तो कथा हो गई कि ये बैकुंठ चला गया, लेकिन दूत लोग जब गए जमराज के पास तो क्या रिपोर्ट किए और जमराज जी पर क्या रिएक्शन हुआ? यह है ना जेन्युइन क्वेश्चन। कहते दूतों ने क्या कहा और जमराज जी सुनकर क्या किए? तो धर्मराज के शासन का उल्लंघन अब तक कभी नहीं हुआ था, क्या हुआ आप कृपा करके बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जमदूत जब पहुंचे तो जैसे रोज जाकर सलाम करते थे, प्रणाम करते थे, वैसे नहीं किए, जाते ही क्वेश्चन करते हैं, कति संति है शास्त्रारो जीवलोक सवई प्रभो। हम यह पूछना चाहते हैं कि संसार में जीवों के कर्मों का फल देने वाले कितने शासक हैं? त्रैविधम कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतव। इन जीवों के उन कर्मों के फल देने वाले संसार में कितने हैं? एक विशाल महान सम्राट के हाथ में जैसे छोटे छोटे शासक होते हैं उस तरह के हैं कि आप ही एकमात्र शासक हैं? पहले अपना पोजीशन बताइए। अपना पोजीशन बताइए, आपका क्या पोजीशन है? अब तक तो हम लोगों के मन में यही धारणा बनी हुई थी कि आप ही एकमात्र शासक हैं, लेकिन आज तो आपके आज्ञा का बुरी तरह से उल्लंघन हो गया। तो जमराज कहते हैं कुछ घटना हो गई है क्या? क्या बात है? कहते हैं क्या बात है, जान बच गया यही काफी है। हम लोग कुशल पूर्वक लौट आए यहाँ, यही सब कुछ समझिए बहुत बड़ा हो गया। पाप का लिस्ट बनाकर बैठा बैठा लिखता रहता है चित्रगुप्त, और दे दिया लिस्ट, हम लोग लेकर गए अजामिल के पास उसको लाने के लिए। आ ले करके पकड़ करके उसको लेना चाहे तब तक चार अद्भुत दूत वहां आ गए, अद्भुत सिद्ध वहां आ गए। अभी हम लोग उसको दंड देने के लिए लेना ही चाहते थे, लाने के लिए उसको पकड़े, रस्सी लगाए, बांधे कि लेकर चले, और तब तक चार दूत आ गए सिद्ध। तस्ते बीतो दंडो न लोके बर्तने धुना चतुर्भी अद्भुत ही सिद्ध ही आज्ञा ते विप्रलंबिता। आठवां श्लोक में प्रभो अब तक कहीं ऐसा नहीं हुआ है, प्रथम बार ऐसी घटना हुआ है कि हम उसको पकड़ करके लाने के लिए तैयार हुए तब तक चार लोग आकर निषेध, नहीं तुम नहीं ले जा सकते हो, ऐसा कह दिए। अच्छा, एकदम जबरदस्ती जम्फांस को काट दिए है अपने हाथ से, लेकिन वो लोग अपने तलवार से काट दिए बलपूर्वक। नियमानम तवा देसाद अस्माभिर यातना गृहान व्यमोचयन पातकिनम छित्वा पासान प्रसह्यते। एकदम पास को काट कर कहे नहीं नहीं ले जा सकते हो, रोक दिए। ऐसे कैसे हो गया? हम लोग गए, हम लोगों को देख करके वो डर गया, और डर कर कांप गया, एकदम भयभीत होकर अपने बच्चे का, वहीं बगल में उसका बेटा खेलता था, बस तान से वेदित मिक्षा मो यदि मो मन से क्षमम नारायण अत्याभिहिते माँ भैरित्या यही उर्दुतम। जो ही अपने बेटे को नाम पुकारा अजामिल, जो ही बोला नारायण, आओ डर रहा था अपने बेटे को पुकारने लगा, जो ही उसके मुंह से नारायण शब्द निकला ते ही डरो मत कहते हुए आ गए वे चारों आ गए। बस अब तो जमराज को ज्यादा प्रवचन नहीं करना है, आगे क्या कहे, आगे वो लोग क्या किए, कैसे रोक दिए, क्या क्या प्रवचन किए, ये सब अब जमराज नहीं पूछ रहे हैं। बात है, बस 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 समझ गया, अब समझ गया क्या बात है कि ये नारायण बोल दिया अंत में, तब तो हमारे रेंज से बाहर हो गया। तब कहते हैं जमराज की परो मदन्यो जगतस्थ तस्थुषश्च उत्तम प्रतम पटवद यत्र विश्वम यदन सतोष्य स्थिति जन्म नाशा नस्यो तवद जस्य बसे च लोकः। अरे मेरे दूतों मैं क्या बतलाऊं, मेरे अतिरिक्त इस चर चराचर के जगत का स्वामी ये कहा है, मैं ही नहीं हूँ, मेरे जैसे और लोग, जितना ये संसार सूत से कपड़ा बनता है वैसे ही अपने छोटे बड़े सब अंश में भगवान है। भगवान विष्णु के रूप में, ब्रह्मा के रूप में, शिव के रूप में इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करते हैं, और इस सारा जगत में जितने जीव हैं उनके द्वारा रस्सी में बंधे हुए उनके आज्ञा के पालन करते हैं, नथे हुए हैं। छोटे बड़े सभी जीव उनके आज्ञा में बंधे हुए हैं, वो ब्रह्मा हो, शिव हो, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, सारे देवता उनके आज्ञा में बंधे हुए हैं। अहम महेंद्रो निरति प्रचेता सोमोग्नि गिरीश पौनोर को विरिंच आदित्य विश्व बसोत साध्या मरुद गणा रुद गणा सिद्धा अन्य चये विश्व सिजो मरेसा भृगवा दयो स्पृष्ट रजस तमस्का अस्य हितम न विदुष स्पृष्ट माया सत्व प्रधाना अपिकिम ततोन्ने। अब पूरा नाम गिन रहे हैं, हरे अरे दूतो सुनो सुनो, इंद्र, निरिति, वरुण, चंद्रमा, विश्वदेव, आठो वसु, सूर्य, ब्रह्मा, बारहो आदित्य, विश्व देवता, आठो वसु, साध्य, उनचास पवन, मरुदगण, सिद्धगण, ग्यारहो रुद्रगण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त जितने भी देवता हैं, और भृगु आदि प्रजापति, सबके सब भगवान के आज्ञा माया के अधीन है, तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते हैं। जब इन लोगों की यह पोजीशन है तो दूसरों की क्या बात, तुम लोग क्या जानोगे, नहीं जान सकते हो। अपि किम ततोन्ये, दूसरे लोग क्या जानेंगे। इसलिए वही प्रभु हम सबके स्वामी हैं, जिनका नाम उच्चारण किया नारायण, वो और उन्हीं के कृपा से इस संपूर्ण जगत में सृष्टि चलती है, पालन होता है, दंड विधान, उनको शासन करना या उनको पुरस्कार देना, स्वर्ग भेजना, ये सब होता है। तो देखो ये धर्म का विधान साक्षात भगवान किए हैं, साक्षात वो धर्म बनाए हैं, और वही अपने धर्म को बनाकर आज्ञा देकर हम लोगों को शासन करने के लिए बनाए हैं। विधायिका भगवान है, वही विधान बनाकर धर्म भेज दिए, और जो देवता है उसको लागू करते हैं, और ये कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, वैसे विधान बनाना भगवान का काम है, उसको लागू करके पालन करवाना देवताओं का काम है। आज यदि पालन नहीं करते तो दंड विधान मेरा काम है, न्यायपालिका। तो हम तो एक विभाग को संभालते हैं, न्यायपालिका को, जो अपराधी है उनको दंड देता हूँ, और उस विभाग में अनेक अनेक देवता अलग अलग सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता के अनुसार काम करते हैं। धर्म बनाने वाले भगवान हैं, और उस धर्म को कोई व्यक्ति दूसरा नहीं जानता, संविधान उनका है। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम न वही विदुर ऋषयो नापि देवा, न उस धर्म के रहस्य को देवता जानते हैं, न ऋषि जानते हैं, न सिद्ध मुखिया असुरा मनुष्य, न सिद्ध मुख्य बड़े बड़े सिद्ध जानते हैं, न असुर जानते हैं, न मनुष्य जानते हैं। कुतः से विद्याधर चारण आदय, विद्याधर चारण आदि क्या जानेंगे, नहीं जान पाता, साधारण लोग नहीं जानते इस धर्म को, वो बनाते हैं, उनके धर्म का पालन करना होता है। हाँ कुछ लोग जानते हैं भागवत धर्म को, सिलेक्टेड 12 लोग जानते हैं, स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्मो बलिर वे आ सकी वयम। इस भगवत रहस्य को स्वयंभू ब्रह्मा जी जानते हैं, स्वयं भगवान का नाम है, स्वयं मतलब जिनको दूसरा जन्म देने वाला नहीं, स्वयं अपना जो कारण है उनको स्वयं कहते हैं, भगवान का नाम है स्वयं। स्वयं जन्म लेते हैं, स्वयं ज्ञान देते हैं, स्वयं सब कुछ स्वयं करते हैं, स्वयं सृष्टि करते हैं, उनमें किसी की हाथ की जरूरत नहीं है, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, वो स्वयं है, इसलिए स्वयं भगवान है। और स्वयं से जो प्रथम बार जन्म लेता है वो स्वयंभू है, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा। और नारद शंभु शिव जी, कुमार चतुष कुमार, कपिल मुनि, मनु महाराज, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, व्यासकी, सुखदेव गोस्वामी और वयम, मैं, इस तरह से 12 लोग धर्म के तत्व को जानने वाले हैं। द्वादश एते बिजानीमो धर्मम भागवतम भटा गुह्यम विशुद्धम दुर्बोधम यम ज्ञात्वा मृतमश्नुते। ये 12 लोग जानते हैं। और इस प्रकार एतावाने वलोकेस्मिन् पुंसाम धर्मः परस्मृत भक्ति जोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादि भी। इसलिए मेरे प्यारे दूतों, अब तुम लोग तो अपने आंख से देख कर आए हो, भगवान के नाम उच्चारण करने से जो प्रायश्चित होता है, नाम कीर्तन से भगवान के चरणों में भक्ति प्राप्त होती है। नाम उच्चारण का महात्म तो हे बेटे हे पुत्र का, नामोच्चारण महात्म हरे पश्यत पुत्र का। अजामिलोपि ये नैव मृत्यु पाशाद विमुच्यत, मृत्यु पाशाद मुच्यत। इस प्रकार नाम के उच्चारण का महत्व तो आप लोग देख ही लिए। अजामिल जैसा पापी जिसका इतना विशाल लिस्ट लेकर गए थे और थोड़ा नाम उच्चारण किया और पार हो गया। इसलिए भगवान के नाम उच्चारण करने वाले व्यक्ति मेरे दंड के पात्र नहीं है, ये स्पष्ट बात है, सुन लो। ये नाम उच्चारण करने वाले, गुण कीर्तन करने वाले, कथा करने वाले हमारे रेंज के बाहर हैं। उनको तो भगवान देखते हैं वो क्या करता है क्या नहीं करता है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष को ऐसा विचार कर भगवान अनंत भगवान कृष्ण का भजन करना चाहिए भक्ति भाव से। वे मेरे दंड के पात्र नहीं है, एक बात। पहली बात यह कि वे पाप करते हैं कि नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोग बस करते भी हैं, उनसे कोई पाप बन भी जाता है, तो भगवान के गुण भगवान के नाम जस उनके पाप को समाप्त कर देता है, अथवा उनके केस को भगवान देखते हैं जैसे करना। 26 श्लोक में एवं ब्रह्मिष्य सुधयो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भाव जोगम तेमे न दंड मर्यन्ते अथ यदम ईशाम श्यात पातकम तदपि हंतु उरुगाय वादः। ओ, उनके पाप का मैं दंड नहीं, ते में न दंड मरिहंती, हम उनको दंड नहीं देते हैं। श्री कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। अगर वो कृष्ण का भजन करते हैं तो उनमें अज्ञान नहीं है, माया नहीं है। यत किंचित अगर किसी कारण बस है भी, तो उनकी भक्ति की जो प्रवृत्ति है, श्रवण कीर्तन की जो प्रवृत्ति है, वह पाप समाप्त कर देती है। जो आदत है कृष्ण कथा करने का, सुनने का, वह पाप समाप्त कर देता है। तो लोग कहते हैं कि तब तो ऐसा बहुत लोग निकल गए, इसका मतलब कि हम लोगों की ड्यूटी खत्म, कोई न कोई तो नाम उच्चारण कर लेगा, तो अब तो हमारा ड्यूटी खत्म, अब किसी को नहीं पकड़ना है। कहें नहीं नहीं, बहुत ऐसे दुष्ट हैं, पकड़ना पड़ेगा। सुन लो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्चन स्मृति चरणारविंदम कृष्णाय नमति अक्षर एकदापि ताना न अध्वमस्तो अकृत विष्णु कृत्यान। जिनकी जिह्वा कभी भगवान के गुणों को भगवान के नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित भगवान के लीलाओं का चिंतन नहीं करता, उनके चरणारविंद का चिंतन नहीं करता, चेतश्चन स्मृति चरणारविंदम अकृष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि, जो कृष्ण के चरणों में प्रणाम नहीं करता। वैष्णव लोग कहते हैं प्रणाम कीजिए, झुकिए, हाथ भी नहीं जोड़ते, सिर क्या झुकाएंगे। तो ऐसे लोग जो एक बार भी कृष्ण के चरणों में प्रणाम नहीं करता, ऐसे भगवत सेवा विमुख पापियों को मेरे पास लाओ, ऐसे बहुत से हैं, हो जो। इसलिए तत्क्षम्यताम स भगवान पुरुषः पुराण, भगवान से क्षमा मांग रहे हैं जमराज जी। नारायण स्वपुरुषई यद सत कृतम न, हमारे द्वारा आपके चरणों में अपराध हो गया, हमारे दूतों ने आपके भक्त को पकड़ने का कोशिश किया, इसलिए क्षमा कीजिए। स्व नाम अहो न विदुषाम रचितांजलि नाम शांतिर गरियसी नमः पुरुषाय भूमने। हम आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, आप माफ कर दीजिए प्रभु, हम अज्ञानी होने पर भी उनके निज जन उनकी आज्ञा पालन करने वाले के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यह योग्य है कि हमें क्षमा कर दें, हे प्रभु आप मुझे माफ कर दीजिए। इस प्रकार जमराज क्षमा याचना कर रहे हैं अंत में। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इसलिए तस्मात संकीर्तनम विष्णु जगन मंगल मंगहसाम महताम अपि कौरव्य विद्यत कांतिक निष्कृतम। इसलिए इस कथा को सुनकर कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम और अंतिम उपाय है भगवान का नाम उच्चारण, इससे बढ़कर कोई प्राचीत नहीं है, इतना बड़ा इतिहास मैं तुमको सुनाया। शीणवताम गुणताम बीरजाम बीरजाणी उद्दामानी हरेर मुहु यथा सुजातया भक्त्या सुधे नात्मा व्रता दिवी। जो लोग बार बार भगवान के उदार चरित्र को सुनते हैं, बोलते हैं शीणवताम, देखिए नाम उच्चारण की महिमा तो है, लेकिन फाइनल प्रवचन करते हुए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं शीणवताम गृणताम बीरजाणी, भगवान के महिमा को सुनता है श्रवणम कीर्तनम सुनता है, उद्दामानी हरेर मुहु बार बार सुनता है भगवान के नाम, भगवान की कीर्ति लीला महिमा, और बोलता है गुनगुनाता है उच्चारण करता है जप करता है गुनगुनाता रहता है। गृणताम गृणता माने जप करना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरेर मुहु मुहु माने बार बार जब उच्चारण करता है इस चरित्र को, बार बार उच्चारण करता है तो भगवान हृदय में भक्ति का उदय हो जाता है। यथा सुजातया भक्त्या, भक्ति उत्पन्न हो जाता है, और उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, चित्त पवित्र होता है, वैसा व्रत आदि से नहीं, तीर्थ यात्रा से नहीं कह रहे हैं, वैसा नहीं होता। जो बात शुरू से प्रारंभ किए केचित केवल्या भक्त्या, वो बात अंत में भी कह दिए उदाहरण के साथ, अजामिल का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए। इसलिए परीक्षित यह इतिहास मैं तुमको सुनाया, और जानते हो यह इतिहास मैं कहाँ सुना हूँ, यह परम गोपनीय रहस्यमय इतिहास मलय पर्वत पर विराजमान अगस्त ऋषि ने भगवान की पूजा अर्चन करते समय सुनाया है। भगवान का अर्चन जब कर रहे थे, इतिहासम इमम गुह्यम भगवान कुंभ संभव कथया मास मलया आसीनो हरिमर्चयन। हमारे आचार्य कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुम हमारे इस प्रवचन पर कुछ शंका कर रहे हो कि नाम की महिमा इतनी नहीं है, बढ़ा कर कह रहा हूँ। अरे इस कथा को अगस्त जी मलय पर्वत पर बैठकर भगवान शालिग्राम की पूजा कर रहे थे, सुबह सुबह स्नान करा रहे थे, उनको फूल चढ़ा रहे थे, अर्चन कर रहे थे, तब तक वहाँ साधु संत बैठे हुए थे और इसी तरह प्रायश्चित की बातें चल रही थी, तो भगवान के चरणों का कसम खा करके इस कथा को कहे अगस्त मुनि, और कहे कि मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, इसमें डाउट करने की जरूरत नहीं है, भगवान का सौगंध खाकर इस इतिहास को कहे, अर्चन करते समय कहे हैं, भगवान के साथ भगवान की कथा को कहे हैं, भगवान की पूजा करते समय, उस समय मैं उनके मुख से इस चरित्र को सुना। इसलिए इसमें शंका नहीं करना चाहिए, जितनी भगवान की महिमा है उतना तो कहीं नहीं पाया, और ज्यादा कैसे कहा जा सकता है। इसलिए इस प्रसंग पर विश्वास करो परीक्षित, सबसे बड़ा प्राश्चित यही है। तो इस प्रकार भगवान का नाम उच्चारण की महिमा बतलाए, और इसके बाद आगे के चौथे अध्याय में महाराज प्रश्न करते हैं। अब नाम की महिमा सुनने के बाद फिर सृष्टि के विषय में पूछते हैं। स्वयंभू मनवंतर में देव असुर मनुष्य सर्प पशु पक्षी आदि की सृष्टि कैसे हुई। देवासुराणा देवासुर नृणाम सर्गो नागा नाम मृग पक्षी नाम सामासिक तया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभूअंतरे। मैं इसको सुना हूँ समास में, संक्षेप में। समास में तो आप बतला चुके हैं, अब व्यास में बतलाइए विस्तार में, तो अब मैं उसको विस्तार से जानना चाहता हूँ। तसैव व्यास मिच्छामि, समास माने संक्षेप, अभ्यास माने विस्तार। तसैव व्यास मिच्छामि ज्ञातु में भगवान यथा अनुसर्गम यथा शक्त्या ससर्ज भगवान पर। तो किस प्रकार सृष्टि आगे की गई इसको बताइए। तो सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित के अभिनंदन करते हुए कथा को बतलाते हैं आगे। राजा प्राचीन बरही की कथा सुनाकर छोड़े हैं उधर चौथे स्कंद में, कि महाराज प्राचीन बरही के पुत्र हैं प्रचेतागण, और प्रचेतागण तपस्या करने के लिए गए थे, भगवान रुद्र के बतलाए हुए उपदेश से ये लोग रुद्र गीत को 10,000 वर्षों तक समुद्र में प्रवेश करके किया था जप। इसके बाद जब ये लोग निकले सृष्टि करने के लिए, एकदम मन एकाग्र करके कथा सुनिए, कोई कठिन नहीं है, तब देखे कि पृथ्वी कूसों से वन से भर गई है, तो इनके मन में बड़ा क्रोध आया और क्रोध के बल से आग उत्पन्न किए और हवा, और सारे जंगल को जलाने लगे। और जंगल विभाग के अध्यक्ष बनाए थे ब्रह्मा जी चंद्रमा को, वनस्पतियों के मालिक हैं, वन मंत्री। तो अब वन मंत्री देखे कि जंगल जल रहा है तो पहुंच गए वहां और आ करके प्रचेताओं की अग्नि को रोकते हुए चंद्रमा कहने लगे, ब्रह्मा जी भी आ गए, सृष्टि का विनाश हो रहा है, ब्रह्मा आ गए, चंद्रमा आ गए। तो चंद्रमा जी आकर कहते हैं, अरे प्रचेताओं, ये वृक्ष बड़े दीन हैं, अरे बेटा इस तरह मत करो, इनसे द्रोह मत करो, तुम प्रजापति हो, इनको मत जलाओ, इन औषधियों का हित करो, ये जीवों के खाने पीने के लिए है, ये पशु घास चरते हैं और इससे जो फल फूल बनता है मनुष्य खाता है, तुम ऐसे मत जलाओ बेटा, ये ठीक नहीं है, ये जीवों का जीवन है, अन्नम चराणाम अचराम ह्य पद पाद चारिणाम अहस्ता हस्त युक्ता नाम द्विपदाम चतुष्पद, नौवा श्लोक में कहते हैं, बेटा इस संसार में एक जीव दूसरे जीव को खाकर अपना जीवन जीता है, संसार विचित्र ढंग से बनाया गया है, देखो ये संसार में पक्षी और पशु मनुष्य सभी एक दूसरे को खाते हैं, ये तृण आदि खाकर पैर वाले पशु जीवित रहते हैं और छोटे छोटे कीटे कीट पतंग को खाकर जीव जीते रहते हैं, फिर ये हाथ वाले वृक्ष आदि बिना हाथ वालों को दो पैर वाले मनुष्य आदि के लिए धान गेहूं आदि अन्न, और इस तरह से चार पैर वाले ऊंट बैल गाय आदि के लिए घास, ये सब भोजन है बेटा, तुम इन लोगों को मारो मत, नष्ट मत करो, और देखो प्रचेताओं इन दीनहीन वृक्षों को मत जलाओ, जो बचे हैं उनकी रक्षा करो, आपका कल्याण हो। और इन वृक्षों ने एक स्त्री एक लड़की का पालन किया है, वार्षी का मारिशा, इसके साथ तुम विवाह करो। ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं, चंद्रमा भी कह रहे हैं, और बेटा इनसे तुम लोग संतान प्राप्त करो और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारा संतान इतना तेजस्वी होगा कि सृष्टि में चार चांद लगा देगा, बहुत बड़ा होगा, दक्ष होगा। प्रचेता लोग विवाह किए, संख्या में 10 थे, दसों को मिलकर एक पत्नी मिली और दसों मिलकर एक पुत्र प्राप्त किए, उसका नाम था दक्ष, प्राचेतस दक्ष, ब्रह्मा का पुत्र दक्ष नहीं। ब्रह्मा जी का पुत्र दक्ष तो शिव जी के चरणों में अपराध किया, सिर कटा, बकरा का सिर जुड़ा, समाज में बेचारा बकरे का मुंह दिखाते हुए लज्जा महसूस करता था, तो फिर से उस शरीर को छोड़ दिया और वो अब मारिशा के गर्भ से जन्म लिया और आज वो प्राचेतस दक्ष हुआ। तो फिर दक्ष प्रजापालन में तत्पर हुए, ब्रह्मा जी फिर उसको प्रजापतियों का अध्यक्ष बना दिए। तो दक्ष प्रजापति भजन करने के लिए, अपनी सृष्टि विस्तार के लिए फिर गए वन में और जा करके वहां तपस्या किए, भगवान के हंस गुह्य नामक स्त्रोत्र से आराधना किए, अगमर्षण पर तीर्थ में गए जो पापों को नष्ट करने वाले तीर्थ में, वहां त्रिकाल स्नान करते थे और हंस गुह्य स्तुति से भगवान की प्रार्थना करते थे, बहुत सुंदर स्तुति है, हमेशा भगवान के चरणों में विनम्र प्रार्थना है, हे नाथ हे भगवान आपकी अनुभूति बहुत मुश्किल से लोगों को होता है, आप प्रकृति से परे हैं, आप तीनों गुण के ऊपर हैं, आप सृष्टि की सत्ता में आपका ही सर्वश्रेष्ठ हाथ है, आप ही सृष्टि करते हैं, आप ही पालन करते हैं, आप ही संहार करते हैं, जब तक आप किसी को अपना स्वरूप नहीं बता सकते तब तक व्यक्ति नहीं जान पाता, आप स्वयं प्रकाश हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, इस तरह से तरह तरह से भगवान के गुणों का स्मरण कर रहे हैं। माया के द्वारा जो निषिद्ध कर देने पर अगर संसार में देखा जाए, ये भगवान है नहीं, ये भगवान है नहीं, ये भगवान है नहीं, सारा चीज को नहीं नहीं करने के बाद प्रकृति के हर वस्तु को नकार दिया जाए, जब लास्ट में भौतिक पदार्थों के नकारने के बाद जो अंतिम शेष बचता है वो आप हैं। अंत में जो चिन्मय वस्तु है वो आप हैं। और इस प्रकार किसी भी नाम से, किसी भी रूप से, किसी भी तरह आपको पुकारा जाए, अगर कहा जाए कि सृष्टि के हर वस्तुओं में, हर रूपों में आप हैं, तो ये भी सत्य है। अगर कहा जाए नहीं, भगवान का स्वरूप ये नहीं है, भगवान प्राकृत वस्तुओं से परे हैं, तो ये भी सत्य है। प्रभु आप मुझ पर कृपा कीजिए, प्रसन्न होइए, आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं। इस तरह से अनेक तरह की बात कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी शक्तियां वादी प्रतिवादियों के विवाद संवाद का विषय होती है, उन्हें बार बार मोह में डाल देती है। लोग तरह तरह की बातें सोचते हैं, यक्षक्तयो बदताम वादिनाम वही विवाद संवाद भूव भवंती कुर्वंत चैसा मुहूर्त मोह तस्मयी नमोनंद गुड़ाय भूमने। हे प्रभु, लोग जो दुनिया में तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद में लग जाते हैं और बार बार मोह में पड़ जाते हैं, भगवान ऐसा है, भगवान वैसा है, तो नहीं ऐसा नहीं है, वैसा है, निराकार है, साकार है, भगवान के चिन्मय रूप है, तो सारे मत अपने अपने ढंग से जो विचार करता है सब मोह में डाल देने वाला है। आप अनंत हैं, आपके अनंत गुण है, अनंत लीला है, आप अनंत स्वरूप हैं, हम आपको नमस्कार करते हैं। अगर कोई कहता है कि भगवान निराकार है तो बिल्कुल ठीक कहता है। क्यों निराकार है? हमारे आचार्यों ने अर्थ किया है निराकार का, निआकार, जिनको कोई प्राकृत आकार नहीं है, संसार के किसी वस्तु से, किसी रूप से जिनकी तुलना नहीं की जाती, उनको निराकार कहते हैं। संसार के जितना रूप दिखाई दे रहा है उस रूप से तुलना किया जाए, भगवान का आंख कमल के समान है? नहीं, बेवकूफी है, ये तो गाली दिया जा रहा है। कमल जैसा आंख है जो जल से निकलने के बाद सूरज के किरणों को झेल नहीं पाता है, मुरझाने लगता है, वैसे भगवान का आंख है? कमल कहना, कमल लोचन कहना वास्तव में भगवान का अपमान है, लेकिन कोई दूसरा उदाहरण है ही नहीं, इसलिए कह देते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि भगवान कमल के समान है, भगवान नील आकाश के समान है, भगवान अस्थि पुष्प के समान नीला है। ये सारा उदाहरण, जहाँ सारा उपमा जहाँ गलत सिद्ध हो जाता है, कोई भी आकृति भगवान के बराबर नहीं है, इसलिए भगवान निराकार है। अथवा नितरम आकार इति निराकार, नीह माने नितरम, सदैव आकार में जो रहते हैं वो निराकार है, जो कभी अपने आकार से रहित नहीं रहते हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप में ही रहते हैं, उनको निराकार कहते हैं। नितराम आकार, हमेशा उनका आकार हमेशा द्विभुज चतुर्भुज रूप है, एकदम कन्फर्म, इसलिए वो निराकार है। तरह तरह की बात है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, तो सारे वाद विवाद जो है मोह में डालने वाला है सब सही है। इस प्रकार हे प्रभु, आप अनुग्रह करके जब किसी जीव को समझाना चाहते हैं, आपका न तो कोई प्राकृत नाम है, न रूप है, न जो भी, आपका कोई प्राकृत रूप नहीं, प्राकृत नाम नहीं, फिर भी जो लोग केवल इस फेरे में निराकार साकार की बात छोड़कर केवल आपके गुण को, आपके नाम को, आपकी लीलाओं को कहने सुनने में आनंद लेते हैं और उसमें रमण करते हैं, वे लोग आपको प्राप्त कर जाते हैं। उन लीलाओं का अनेकों तरह से जो धारण करते हैं, हे प्रभु आप कृपा करके मुझे दर्शन दीजिए, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। योनो येनु ग्रहार्थम भजतम पादमूलम अनाम रूपो भगवान अनंत नामानिरूपाणि च जन्म कर्म भी भेजे समह्यम परमः प्रसिद्धतु। आप मुझ पर प्रसन्न होइए प्रभु। इस तरह से अनेकों श्लोक में लोगों की उपासनाएं प्रायः साधारण कोटि की होती है, अतः आप सबके हृदय में रहकर उनकी भावना को जानते हैं, भिन्न भिन्न रूप में जानते हैं, उनके इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं इस तरह। और कहते ठीक वैसे जैसे हवा गंध लेकर सुगंधित प्रतीत होती है, परंतु वास्तव में वो सुगंधित नहीं है, वे सबकी भावनाओं के अनुसार अनुसरण करते हुए प्रभु मेरी अभिलाषा पूर्ण कीजिए। कहते हैं यह प्राकृतिक ज्ञान पथई जना नाम यथा संयम देह गतो विभाति यथा नीला पार्थिव आश्रितो गुणम स ईश्वरों में कुरुतान मनोरथम। क्या उनका मनोरथ है? दक्ष प्रजापति बोल नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि आप सबके मनोरथ को जानते हैं, तो हमारे मनोरथ को भी जानते हैं कि हम सृष्टि करना चाहते हैं, तो आप हमारी सहायता कीजिए प्रभु। तो इस प्रकार उनके चरणों में दक्ष प्रजापति प्रार्थना किए और इसके बाद भगवान प्रकट होकर के उनके तपस्या का अनुमोदन करते हुए कहे कि मुझ पर श्रद्धा करने से आपका प्रेम भाव उदय हुआ है। हे प्रिय दक्ष, देखो ये पंचजन प्रजापति की कन्या अशकनी है, इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो और गृहस्थोचित स्त्रीय सहवास रूपी धर्म को स्वीकार करो और इनसे प्रजा उत्पन्न करो। प्रजापते, अब तक तो अनेकों प्रकार की सृष्टि हुई, मानसिक सृष्टि, और अब तुमको मैं आदेश देता हूँ कि तुम मेरी माया से आप इस सृष्टि करो, स्त्री पुरुष संयोग मैथुनी सृष्टि। यद्यपि यह सृष्टि प्रारंभ हो चुकी है पहले से, तो मेरी सेवा में तत्पर रहोगे और सृष्टि का जब विस्तार करोगे तो मैं आप पर प्रसन्न होऊंगा, आप मेरी आज्ञा पालन कीजिए, ब्रह्मा जी की आज्ञा पालन कीजिए। तो इस प्रकार फिर आगे के अध्याय में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि दक्ष प्रजापति अपने उस पंचजन की पुत्री अशिकनी से 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन पुत्रों का नाम था हरियश्व। हरियश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन पुत्रों को तपस्या करने के लिए भेज दिए। एक स्वभाव के थे, एक आचरण के थे, विचित्र विचित्र इस सृष्टि में लोग हैं। 10,000 लोग एक स्वभाव के थे, कोई मतभेद नहीं था, कोई अलग अलग विचार नहीं, एक मानसिकता के, एक आचरण के, एक स्वभाव के, इसलिए उन सबका नाम एक था, हरियश्व। तो 10,000 लोगों का ग्रुप एक साथ रहता था, उनका नाम हरियश्व था। पिता की आज्ञा से पश्चिम सिंधु नदी के तट पर और जो नारायण सर पर तपस्या करने के लिए गए, पहले से भागवत धर्म में रुचि है, नारायण सर में स्नान किए, तपस्या की प्रवृत्ति है, निश्चयता है, इसलिए उनकी बुद्धि शुद्ध है, भागवत धर्म में प्रवृत्ति है। यह देखकर नारद जी उनके पास गए और देख लिए कि इनके पास भक्ति करने की योग्यता है, इसलिए देवर्षि नारद जाकर के कहने लगे, अरे हरियश्व वाच चात हरियश्व कथम सुरक्षस्य वही प्रजा अदृष्टवान्तम भूव यूयम बालिशावत पालका। 10 बुझौल बुझा दिए नारद जी, उनको पहेली बुझाए, तो कहते हैं कि तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे हो, पृथ्वी का अंत देखे हो, पृथ्वी की सीमा कहाँ तक है। तो जब पृथ्वी का अंत ही नहीं देखे हो तब सृष्टि कैसे करोगे, तो बड़े खेद की बात है। अदृष्टवान्तम भूयो यूयम, तुम लोग पृथ्वी का अंत देखे हो, बालिशा बत पालका, अरे बड़े खेद की बात है, कैसे सृष्टि करोगे बेटा, पृथ्वी का अंत नहीं देखे हो ना। फिर कहते हैं कि एक ऐसा देश है जिसमें एक ही पुरुष है, और फिर कहते हैं आगे कि एक ऐसा जगह है, एक ऐसा बिल है जिसमें जिसे बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं है, केवल घुसने का रास्ता है, निकलने का नहीं। और एक ऐसी स्त्री है जो बहुरूपिणी है, बहुरूपिया, बहुत रूप धारण करती है। एक ऐसा पुरुष होए है जो व्यभिचारिणी का पति है, वेश्या का पति है। एक ऐसी नदी है जो आगे पीछे दोनों तरफ बहती है। फिर एक ऐसा विचित्र घर है जो 25 पदार्थों से बना है। एक ऐसा हंस है जो विचित्र विचित्र कथा कहता है। और एक ऐसा चक्र है जो छुरे और वज्र के समान तीखा है और चलता रहता है, अपने आप ऑटोमेटिक घूमता है। तुम लोग अपने सर्वज्ञ पिता के विषय में जानते हो, उनके उपदेश को जानते हो, असली पिता। जब तक तुम उनके उपदेश को नहीं जानोगे तो कैसे सृष्टि करोगे बेटा, यह कहकर नारद जी चले गए। हरियश लगे विचार करने कि क्या है भाई, ये क्या बोले नारद जी, क्या बोले। तो 10 आपस में विचार करने लगे और सोचने लगे कि ये है क्या। तो सोच रहे हैं कि यह लिंग शरीर ही पृथ्वी है, पृथ्वी का विकार है, और इसका अंत जब तक नहीं पता चलेगा, विनाश मृत्यु नहीं देखा जाएगा, तब तक कैसे सृष्टि होगा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इस पर विचार करना पड़ेगा कि एक दिन शरीर छोड़ना है, नहीं तो इसी में रच पच कर आदमी मर जाएगा। इसलिए इनके इन विचार को देखना पड़ेगा, बिना मोक्ष के अनुपयोगी कर्मों से क्या लाभ है, शरीर को कैसे इस जीवन को मुक्त किया जाए इस लिंग शरीर से, इसका अंत तो देखना पड़ेगा। कब कौन ऐसा काम करने पर इस लिंग शरीर का अंत होगा, फिर नहीं इसमें आना पड़ेगा, यह विचार। दूसरा, ईश्वर कृष्ण ही एकमात्र पुरुष हैं और सब उनकी प्रकृति है। एक ऐसा देश है जहाँ एक ही पुरुष है, उनकी प्रकृति है, अंतरंगा प्रकृति, बहिरंगा प्रकृति और अनंत कोटि जीव समुदाय तटस्था प्रकृति, पुरुष तो वही है। और भगवत धाम ही एक ऐसा बिल है जहाँ जाने का रास्ता है, आने का नहीं। जद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परम मम, जाते तो है लोग लेकिन आते नहीं, वह है भगवत धाम। ये समझ रहे हैं, इसको कोई बता नहीं रहा, आपस में विचार कर रहे हैं कि इस तरह से। और बुद्धि जो है बहुरूपिणी स्त्री है, बहुत रूप धारण करती है। और कहते हैं जीव ही वह पुरुष है जो व्यभिचारिणी इस वेश्या का, पुरंजनी का पति है, बुद्धि का, तो कथा सुन चुके हैं। और माया एक ऐसी नदी है जो दोनों तरफ बहती है, सृष्टि भी करती है और मारती भी है, जन्म भी देती है मारती है, दोनों तरफ बह रही है ये माया, प्रलय भी करती है। और 25 तत्वों का एक घर है वो शरीर है। और भगवत स्वरूप को बताने वाला शास्त्र जो है वही हंस है, क्योंकि ये दूसरा जन्म शास्त्र से होता है, इसलिए भगवत स्वरूप बताने वाला शास्त्र ही हंस है, जिसकी विचित्र कहानियां हैं, तरह तरह की कहानी ये हंस बोलता है। और काल ही वह चक्र है जो ऑटोमेटिक चलता है, किसी को छोड़ता नहीं। आ शास्त्र ही पिता है, क्योंकि दूसरा जन्म शास्त्र होता है। इस प्रकार सबने एक मत से नारद जी के आदेश को स्वीकार कर लिया और विचार करने लगे। देवर्षि नारद के बताए हुए पथ के पथिक बनकर मोक्ष पथ का पथिक बने, निवृत्ति मार्ग में पड़ गए। निवृत्ति मार्ग में पड़े पड़े ये लोग निर्णय ले लिए कि अब घर गृहस्थी में नहीं पड़ना है, छोड़ दिए, आए ही नहीं लौट कर घर। जब प्रजापति दक्ष को मालूम हुआ कि नारद इस तरह से उत्पात कर दिया, हमारे बच्चों को भिक्षुक मार्ग सिखा दिया, तब ब्रह्मा जी से कहने लगे कि क्या किया जाए, ये तो नारद बच्चों को भिक्षुक बना दिया। कोई बात नहीं, आप किसी भी प्रकार नारद पर नाराज मत होइए, वो अपना काम कर रहा है, आप सृष्टि करो, दूसरा ग्रुप उत्पन्न करो। तो फिर 1000 पुत्र फिर उत्पन्न किए, 10000 किए थे, अब 1000। पहले पुत्रों का नाम था हरियाश्व, और अब जो उत्पन्न किए 1000, तो उनका नाम हुआ शुबलाश्व, तो सबलाश्व नाम था। सबलाश्व नाम के 1000 पुत्र उत्पन्न किए, कहे जाओ बेटा तपस्या करके शक्ति अर्जन करो। परंपरा से वे लोग भी उसी नारायण सर पर गए। तो नारद जी घूमते हुए गए और कहे कि बेटा, शास्त्र और महात्मा बड़े बड़े मनीषी कहते हैं कि बड़े भाई के आज्ञा पालन करना चाहिए, बड़े भाइयों के पथ का अनुकरण करना चाहिए। और जब जो व्यक्ति अपने से बड़े भाई के आज्ञा का पालन करता है वह अच्छा लोक प्राप्त करता है। इस तरह से उनको सिखा रहे हैं कि आप लोग अपने बड़े भाइयों का पालन कीजिए, और तुम लोग जब इन उपदेश को ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप से अच्छे गति प्राप्त करोगे। पहले के समान कूट वचन बोल दिए। तब ये लोग विचार करने लगे और पता चला कि हमारे भाई तो भागवत धर्म का पालन किए हैं, तो ये लोग भी उसी मार्ग का अनुगमन किए, फिर लौट कर घर नहीं आए, विरक्त बन गए। तो दक्ष को तो बड़ा क्रोध आया। दक्ष प्रजापति देखे कि बड़ा अपशकुन हो रहा है, बाद में पता चला कि ये तो हमारे इन पुत्रों को भी चौपट कर दिया, ये तो हद कर दिया, मिल जाएगा तब बताऊंगा। तब तक नारद जी नारायण नारायण करते हुए दक्ष के पास आ गए, दक्ष के पास भी आ गए एकदम, कोई डर नहीं। तो दक्ष प्रजापति तो देखकर आग बबूला हो गया, कहे अरे मूढ़, जाओ लोक लोकांतरों में भटकते रहो, कहीं भी तुम्हारे ठहरने का ठौर ठिकाना नहीं हो, शर्म नहीं आती है, हमारे बच्चों को भिक्षुक बना दिया और हमारे पास भी आ गया। त तरह तरह से आक्रोश में बोलने लगे, लेकिन देवर्षि नारद उनके बातों पर कोई ध्यान नहीं दिए। यहाँ वर्णन है कि देवर्षि नारद बहुत अच्छा प्रजापति कहकर खुशी में चले गए, स्वीकार कर लिए उनके श्राप को। यहाँ कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, बस यही साधुता है। प्रतिग्रह तदवाढ़ नारद साधु सम्मत एतावान साधुवादो ही तितिक्षेते स्वर स्वयं। हे राजन, हे परीक्षित, बस इसी को साधुता कहते हैं कि बदला लेने की शक्ति हो, लेकिन दूसरों के किए हुए अपकार को आसानी से सह लिया जाए, बस यही साधुता है। नारद जी सह लिए, कुछ नहीं बोले। इसके बाद आगे के अध्यायों में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि अब तो नाराज हो गए, एकदम सिर हाथ पर सिर रहकर बैठ गए। ब्रह्मा जी से कहने लगे कि अब क्या सृष्टि करना है, मैं सृष्टि कर करके एक दो नहीं 11,000 सृष्टि किया ना, नारद सबको साधु बनाता जाता रहेगा तो हम क्या करेंगे, अब हमसे कुछ नहीं होने वाला है। तो कहे कि एक काम करो, अब लड़कियों को उत्पन्न और तुम्हारे पुत्रियों के वंश परंपरा से सृष्टि का विस्तार हो जाएगा। अब इसके बाद दक्ष प्रजापति 60 पुत्रियां उत्पन्न किए, 60, अब ज्यादा नहीं किए, 60 उत्पन्न किए और 60ों में 10 धर्म के साथ विवाह किए, और 2 बार में 17 कश्यप जी को, 1 बार 13 1 बार 4, और 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशास को और 27 चंद्रमा को। तो इस प्रकार 60 कन्याएं उत्पन्न किए, 17, 10, 27 और फिर 27 चंद्रमा, और कितना हुआ 54, और 2 भूत, 2 अंगिरा, 2 कृशास, 60 60 कन्याएं उत्पन्न किए। तो इन कन्याओं के वंश परंपरा को सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, तो आप लोग भी थोड़ा सावधान होकर के सुन लीजिए। धर्म की 10 धर्म ने 10 कन्याओं से विवाह किया, तो उनमें भानु, लंबा, ककुभ, जामी, विश्वा, असंध्या, मरुत्वती, मुहूर्ता, संकल्पा और वसु। धर्म के 10 पत्नियां हैं, तो 10ों से संतान प्राप्त किए, उसको भी वर्णन कर रहे हैं कि भानु से देव ऋषभ, देव ऋषभ से इंद्रसेन, और फिर लंबा नामक पत्नी से विद्योत और विद्योत के मेघगण, और ककुभ से संकट और संकट से कीकट, 2-2 पीढ़ी तक का वर्णन करते हैं। फिर जामी से स्वर्ग और स्वर्ग से नंदी, विश्वा से विश्वदेव और विश्वदेव से विश्वदेव, कोई संतान नहीं हुआ, निसंतान रहे, और साध्या से साध्यगण, साध्यगण से अर्थ सिद्धि, और मरुत्वती से 2 पुत्र प्राप्त किए, मरुत्वान और जयंत, जो वासुदेव के अंश हैं, उपेंद्र के अंश हैं, और फिर मुहूर्ता से मुहूर्ताभिमानी देवतागण, और संकल्पा से संकल्प, संकल्प से काम, अब वसु 8वीं पत्नी वसु, उसे 8 वसु, द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसु और विभा वसु। द्रोण की पत्नी अभिजीत, अभिजीत से हर्ष, शोक, भय के अभिमानी देवता, और प्राण की पत्नी ऊर्जस्वती, इससे सह, वायु और पूर्वजव, और ध्रुव की धरणी, और धरणी से नगरों के अभिमानी देवता, और अर्क से वासना, वासना से तर्ष, तृष्णा आदि पुत्र हुए, और अग्नि से धारा, धारा से द्रविणिक आदि बहुत पुत्र हुए, और 2 से सर्वरी, सर्वसी से शिशुमार, शिशुमार भगवत कलावतार है, और वसु से आंग्निरसी, विश्वकर्मा, आंग्निरसी से विश्वकर्मा, कृति से चक्षु, विश्वदेव, साध्यगण, और विभा वसु से उषा के गर्भ से व्यूष्ट, रोचिस और आतप। और फिर भूतगण जो विवाह किए 2 पत्नियों से, तो स्वरूपा नामक पहली पत्नी से कोटि कोटि रुद्रगण, और उसमें से 11 प्रसिद्ध हैं, रैवत, अज, भव, भीम, बाम, उग्र, विशाकपि, अजयकपाद, अहिर बुद्ध, बहुरूप और महान, ये 11 प्रधान हैं। और फिर भूता से भूत, स्वरूपा, स्वरूपा और भूता 2 पत्नियों से विवाह किए, तो इनसे भयंकर और विनायक, और दूसरी इसे भयंकर विनायक पार्षद हुए महान का, जो भूत गणों में एकादश रुद्रों में जो महान है उनके पार्षद हुए। और फिर अंगिरा दो पत्नियों से विवाह किए थे, तो अंगिरा की एक पत्नी थी स्वधा, स्वधा से पितृगण उत्पन्न हुए, और सती दूसरी पत्नी थी जिसे आंगिरस नामक वेद के पुत्र उत्पन्न हुए। और कृषासु ने दो पत्नियों को ग्रहण किया, तो कृषासु के अर्ची से धूमकेश और धीषणा से वेद सीरा देवल बयुन और मनु। फिर कश्यप जी, कश्यप जी के तारसिधारी कश्यप जी चार पत्नियों से विवाह किए थे, फिर कश्यप अलग से 13 का विवाह किए, इसलिए 17 है इनकी पत्नी है। तो तार्स नामधारी कश्यप बिनता के गर्भ से गरुण और अरुण, अरुण माने सूर्य के सारथी और गरुण भगवान के परिकर, और कद्रु नामक पत्नी से नागगण को उत्पन्न किए। महाराज परीक्षित बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं, आप देखेंगे कि कश्यप जी की सृष्टि कैसे हो रही, सारा संसार भर दिए हैं। नाग भी उत्पन्न करते हैं, पक्षी भी उत्पन्न करते हैं, और पतंगी से पक्षीगण को उत्पन्न किए, जामिनी से सलभ आदि फतिंगे छोटे छोटे कीड़े, और फिर चंद्रमा के 27 पत्नियां थी रोहिणी आदि, लेकिन इनसे किसी से संतान उत्पन्न नहीं कर पाए चंद्रमा, क्योंकि रोहिणी में बहुत आसक्त थे और रोहिणी से विशेष प्रेम करते थे। 26 लड़कियां नाराज हो गई और दक्ष प्रजापति के पास जाकर शिकायत की कि चंद्रमा तो एक के साथ आ सकता है, हम लोगों से कोई मतलब नहीं उसका, तो दक्ष श्राप दे दिया था क्षय रोग हो जाए, इसलिए वो छीण होने लगा। फिर दक्ष ने प्रसन्न होकर उसको कृष्ण पक्ष से छीण कलाओं को शुक्ल पक्ष में पूरा होने का वरदान दिया, लेकिन उन देवियों से कोई संतान नहीं हुआ। एक पुत्र चंद्रमा प्राप्त किए थे, जो आगे कथा आएगी, बुद्ध, उन्हीं से उस सृष्टि चली। तो फिर कश्यप जी के 17 पत्नियों का वर्णन करते हुए, 4 का तो हो गया, फिर 13 का, तो अदिति से 12 आदित्य हैं देवता लोग, विवस्वान, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता, भोग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम वामन देव। ये 12 पुत्र अदिति के गर्भ से हुए। इस प्रकार ये 12 आदित्य हैं, विवस्वान सूर्य की पत्नी संज्ञा से श्राद्ध देव, वैवस्वत मनु, यम यमी और घोड़ी रूप द्वारा 2 अश्विनी कुमार, और दूसरी पत्नी छाया से सनेश्वर और सावर्णी मनु को उत्पन्न किए। फिर त्वष्टा की पत्नी रचना दैत्य कुल की थी, इससे त्वष्टा जी ने 2 पुत्र प्राप्त किया, सन्निवेश और विश्वरूप, जो बृहस्पति जी के नाराज होने पर देवताओं का पुरोहित बने थे विश्वरूप। और इस प्रकार फिर दीति से 2 पुत्र प्राप्त किए कश्यप जी, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु, जिनका प्रहलाद, विरोचन, बलि महाराज आदि की कथाएं हैं। और दनु से 61 पुत्र हुए, दिमुधा, संबर, अष्टि, पुलोमा, विश्वर्बा, विपचिति आदि प्रमुख पुत्र हैं। और काष्टा से घोड़े आदि 1 खुर वाले पशु उत्पन्न हुए, और सुरसा से जातुधान राक्षस, अरिष्टा से गंधर्व, इला से वृक्ष, लता, वनस्पतियां, मुनि नामक पत्नी से अप्सराएं, क्रोधवशा से सांप, बिच्छू, विषैले जंतु उत्पन्न किए, और ताम्रा से बाज, गिद्ध आदि शिकारी पक्षी, सुरभि से भैंस, गाय आदि 2 खुर वाले, और शर्मा से बाघ, सिंह, हिंसक जीव, और तिमी से जलचर जंतु। इस प्रकार दक्ष प्रजापति के कन्याओं का वंश का वर्णन करते हैं, और फिर आगे 6 स्कंद के 7 अध्याय में वर्णन करते हैं। एक विचित्र कथा कहते हैं कि एक बार देवराज इंद्र किस प्रकार से अपमान कर दिए बृहस्पति जी का, तो ये प्रश्न करते हैं महाराज परीक्षित। कथा के प्रसंग में एक बात कहे हैं कि त्वष्टा के पुत्र थे विश्वरूप, जो रोचना के गर्भस्थ थे, रोचना असुर कुल की थी, और उसे त्वष्टा आदित्य है, त्वष्टा अदिति के गर्भ से त्वष्टा 12 आदित्यों में एक है, इंद्र के भाई हैं। तो त्वष्टा जी के द्वारा 2 पुत्र प्राप्त हुए थे रोचना के गर्भ से, 1 सन्निवेश और दूसरा विश्वरूप। तो उसी क्रम में लिंक देखिए, समझिए, 7 अध्याय चालू हो रहा है एक विचित्र कथा को लेकर। अद्भुत प्रसंग बदलने वाला है। यहाँ से यहाँ पर महाराज परीक्षित प्रश्न करते हैं कि भगवान कस्य हेतु परित्यक्ता आचार्येण आत्मना शुरा एतदाचक्षु भगवान शिष्याणाम अक्रमम गुरु। क्या कारण हुआ कि बृहस्पति जी अपने शिष्य देवताओं को त्याग दिए? आखिर बृहस्पति जी नाराज हो गए तब त्वष्टा के पुत्र विश्व रूप को ये देवता लोग गुरु बनाए थे कि त्वष्टा के दो पुत्र थे सन्निवेश और विश्व रूप, और वही विश्व रूप एक बार बृहस्पति जी के नाराज होने पर देवताओं से नाराज हो गए बृहस्पति जी, उनको छोड़ दिए, तो ये लोग विश्व रूप को गुरु बनाए थे त्वष्टा के पुत्र को। तो ये पूछ रहे हैं कि देवाचार्य देवताओं के आचार्य बृहस्पति ने अपने शिष्य देवताओं को क्यों त्याग दिया? अरे देवताओं के द्वारा गुरु के चरण में कौन अपराध हुआ कि गुरु जी नाराज हो गए? आखिर कोई तो गलती तो हुआ ही है ना। तब आगे कथा को कहते हैं बड़े सुंदर ढंग से कि एक बार की बात है, देवराज इंद्र अपने स्वर्ग में बैठे हुए थे, उनके साथ विविध प्रकार के ऊंचे राज सिंहासन पर बैठे हुए आठों मरुदगण, 11 रुद्रगण, सब आदित्य, ऋभुगण, विश्वदेव, सातगण, अश्विनी कुमार, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े कुर्सियों पर बैठे हैं। सबसे ऊंचे आसन पर इंद्र हैं और अपनी पत्नी सची के साथ बैठे हैं, विद्याधर, अप्सराएं सब उनकी सेवा कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, जय हो महाराज इंद्र की, देवराज इंद्र की जय हो, चारों तरफ से। अपने पत्नी के साथ राज सिंहासन पर, स्वर्ग के सिंहासन पर बैठे थे आज, तब तक आ गए बृहस्पति जी। बृहस्पति जी प्रतिदिन आते थे, तो बृहस्पति जी आते थे तो देवराज इंद्र अपना आसन छोड़कर गुरु महाराज के चरणों को प्रणाम करते थे छूकर, और फिर आदर पूर्वक उनके आसन के तरफ इंगित करते थे, आसन पर बैठाते थे, फिर उनके चरणों की पूजा करके, सम्मान करके, माला अर्पण करके, चंदन लगाकर, चरण धोकर, तब अपने आसन पर बैठते थे इंद्र। लेकिन आज एक विचित्र घटना घटी, गुरु महाराज को देखे कि सभा में आए हैं लेकिन वो आसन नहीं छोड़े, अनदेखा जैसा व्यवहार कर दिया इंद्र, आंख हटा दिया। तो बृहस्पति जी अपने आप जाकर आसन पर बैठेंगे तब न, तो बृहस्पति जी को पता चल गया कि हिल डोल नहीं रहा है, इसके मन में अहंकार बढ़ गया है, इतना बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठे रहने शासन करने से मद हो गया है, इसलिए बिना कुछ छेड़खानी किए बृहस्पति जी उस सभा से निकल गए। और निकल कर जा करके सोचने लगे कि हाय हाय बड़ी खेद की बात है, इस तरह का विचार इसके मन में आया तो अपने अंतरहित हो गए, छिप गए, घर में भी नहीं रहे, घर से भी चले गए। तब तो कुछ देर के बाद इंद्र का ध्यान आया गुरु जी के आसन के तरफ, तो आसन पर तो नहीं बैठे हैं, कहाँ गए? सभासदों से, देवताओं से पूछने लगे, अरे गुरु जी कहाँ गए? आए थे ना? हाँ आए थे लेकिन निकल गए। जब इंद्र ही नहीं स्वागत किया तो अन्य देवता भी कुछ नहीं किए, कोई कुछ नहीं किया, देखिए संयोग। तो लगे अफसोस करने, हाय हाय बड़े दुख की बात है, मैं मूर्खता बस ऐश्वर्य के मद में अपने गुरु महाराज का अपमान किया, हाय हाय स्वर्ग की राज लक्ष्मी पाने की कौन इच्छा करेगा, देखो इतना अहंकार हो गया, मैं अपने गुरु जी को प्रणाम तक नहीं किया, ये रजोगुणी भाव मेरे हृदय में भर गया, हाय हाय बड़े दुख की बात है, इस तरह से मैं अब घोर नरक में गिरने वाला हूँ, इस तरह की अहंकार मुझे मेरा नाश कर देगा। यह सोचकर इतना पछताने लगे कि अब वहां से निकले और लगे खोजने बृहस्पति जी को। बृहस्पति जी का पता करने लगे तो घर पर भी पता नहीं चला। अब यह संवाद जब शुक्राचार्य जी को पता चला तब असुरों को उकसाए कि बस बस यही टाइम है, चलो स्वर्ग पर चढ़ाई करो। अब देवता लोग तो बेचारे अपराध से, बृहस्पति जी के चरणों में किए गए अपराध से ही इसी तरह दीनहीन मलिन हो गए थे, श्रीहीन हो गए थे, दूसरे असुरों का आक्रमण हुआ और बिना युद्ध किए ये लोग भयभीत होकर भागने लगे, और इतना बल बढ़ा असुरों का कि देवताओं के ऊपर हावी हो गए, लगे मारने बाण उनके सामने तो देवता टिक ही नहीं पाए, ये तो हतश्री हो गए थे, युद्ध करने का कोई ताकत ही नहीं था, अंग कट कट कर गिरने लगा। देवराज इंद्र एकदम ब्रह्मा जी के शरण में गए और कहने लगे, पितामह आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमें बताइए अब हम क्या करें, कैसे इन असुरों पर विजय प्राप्त करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा, रे मूर्ख हो, तुम लोगों से बहुत गलती हुई, बड़ा दुख की बात है, सचमुच तुम लोगों ने बहुत बुरा कर्म किया है, महान तेजस्वी का अपमान किया है, गुरु का अपमान किया है, तुम लोगों ने अनिति का यह फल है कि असुर लोग तुम पर हावी हो गए। अब क्या कहें, इस समय तो बृहस्पति को खोजना मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, एक काम है कि तुम्हारा भतीजा जो त्वष्टा का पुत्र विष रूप है उसको तुम पुरोहित बनाओ, गुरु बनाओ, अगर वह चाहेगा तो तुमको ये स्वर्ग की संपदा लौटा देगा, वह समर्थ लड़का है। तब देवराज इंद्र देवताओं को लेकर गए और विष रूप को मनाने लगे कि बेटा विष रूप तुम्हारा कल्याण हो, हम तुम्हारे यहाँ अतिथि बनकर आए हैं, बेटा सतपुत्रों का सबसे बड़ा कर्तव्य है कि अपने गुरुजनों की आज्ञा पालन करे, तुम ब्रह्मचारी हो, देखो किसी भी छोटे का कर्तव्य है बड़े की आज्ञा पालन करना, केवल कर्तव्य है अपने गुरुजनों की सेवा करना, हम तुम्हारे बड़े हैं हमारी सेवा करो, बेटा तुम पुरोहिती का काम स्वीकार करो, जो काम बृहस्पति जी करते थे वो तुम करो। तो विश्व रूप कहते हैं कि यह तो पुरोहिती का काम बड़ा गर्हित है, जजमान के पाप पुण्य सबको लेना पड़ता है, इतना जघन्य वृत्ति से हम नहीं जीना चाहते हैं, हम तो ब्रह्मचारी हैं, कहीं भी खेत में पड़ा हुआ अनाज भी खाकर जीवन बिता लेंगे, हमको भारी भारी दक्षिणा की जरूरत नहीं है, हम पुरोहिती नहीं करना चाहते हैं, लेकिन बेटा बड़ों की आज्ञा तो मानोगे ना, हम चाहते हैं कि तुम करो। अब देवता लोग इतने आग्रह करने लगे, वो भी देवराज इंद्र, तब वो स्वीकार कर लिए और स्वीकार करके पुरोहिती का काम चालू किए। ब्रह्मा जी ने पहले उनको संकेत किया था कि एक संकेत कि विश्व रूप असुर कुल में उसका ननिहाल है, तो कुछ तो ममता उसको असुरों के साथ भी रहेगा ननिहाल के प्रति, लेकिन थोड़ा मोड़ा कुछ पक्ष लेगा तो आप लोग उसे सह लीजिएगा, लेकिन पुरोहिती का काम जब स्वीकार कर लिए विश्व रूप, तो स्वीकार कर लिए, स्वीकार करने के बाद अब विश्व रूप बड़े लगन के साथ बृहस्पति जी के पथ पर चलने लगे और इंद्र को एक अत्यंत तेजस्वी वैष्णवी विद्या का उपदेश किए। वैष्णवी विद्या जिसको नारायण कवच कहते हैं, इस नारायण कवच का उपदेश देवराज इंद्र को किए और देवराज इंद्र उस नारायण कवच को स्वीकार करके ग्रहण करके असुरों पर विजय प्राप्त कर लिए। यह भगवान की विद्या से युक्त नारायण कवच का उपदेश किए हैं। तो जिस विद्या से सुरक्षित होकर इंद्र ने असुरों की सेना पर विजय प्राप्त की और उस विद्या को प्राप्त करके असुरों पर विजय प्राप्त कर लिए। तो फिर महाराज परीक्षित जिज्ञासा करते हैं कि वो नारायण कवच किस रूप में उपदेश किए, विश्व रूप वो क्या है, हम लोग भी जान सकते हैं। तो इस जिज्ञासा का उत्तर अगले अध्याय में, आठवां अध्याय में नारायण कवच का उपदेश करते हैं। नारायण कवच को ग्रहण किए इंद्र, तो आगे की कथा फिर विस्तार से नारायण कवच से कल प्रारंभ किया जाएगा और फिर शेष कथाएं कल पूरी की जाएगी। हरे कृष्ण, जय श्री प्रभुपाद।